الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج انتہائی اہم ٹاپک ہے، اور اس کے بارے میں جو تحقیق ہے وہ سامنے آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ تصوف میں شیخ کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے، شیخ کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوتا. جو اس راستے کے مشاہیر ہیں، مثلا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مجد الرفسانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات، ہمیں تو ان ناموں کا پتہ ہے، اس سے زیادہ اور بھی بہت سارے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں. ان سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، یعنی بتاتے ہیں کہ بغیر اس کے مطلب وہ نہیں ہوتا. جب اتنا اہم پلر ہے کسی نظام کا، تو اس میں غلطی، بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے. اس کی اہمیت سمجھنے میں غلطی بھی نقصان ہے. اہمیت ہو لیکن اس کی شناخت میں مسئلہ ہو تو بھی نقصان ہے. ان کے ساتھ رابطہ رکھنے یا نہ رکھنے میں کوئی کمزوری ہو تو وہ بہت بڑا نقصان ہے. یہ ساری باتیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے ساتھ ملانے والا یہ نظام، اس کو خدا بھی نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ خدا تو نہیں ہے، لیکن اس کے انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ملنے کے لیے اس کی اہمیت ہے، وہ بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انسان ہونے کی خیال کے ساتھ، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اگر ذہن میں نہ رکھی جائے تو بڑا نقصان ہو. مثلا اللہ جل شانہ محتاج نہیں ہے، اللہ جل شانہ بے لوث ہے، اللہ جل شانہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اللہ جل شانہ جذبات سے پاک ہے. یہ صفات اللہ کے، انسان کے نہیں ہیں. تو انسان جو بھی ہوگا، چاہے کتنے بڑا ہو کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال یہ چیزیں تو اس کے ساتھ ہوں گی. تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر مسائل بھی ہو سکتے ہیں، تو ان چیزوں کا ادراک بھی ہونا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ وَلَا طرف و اسوات کم فوق صوت النبی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ان کو عام لوگ کی طرح نہ بلاؤ. ہاں جی. اور جو ہے نا، یہ ہے کہ وہ خود تو نہیں کہے گا، لیکن تم لوگ خود ہی اٹھو. یعنی مطلب جب کانا پینا ہو جائے، پھر اس کے بعد زیادہ نہ روکو، کیونکہ خود تو نہیں کہے گا حیا کی وجہ سے، لیکن تمہیں خیال رکھنا چاہیے. سمجھ میں آئی؟ بدمدی، یہ ساری باتیں انسان ہونے کے لحاظ سے. تو انسان ہونے کے لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ان باتوں کا ادراک بھی ضروری ہے. اس وجہ سے یہ جو مضمون ہے، چونکہ اس پر پورا نظام منحصر ہے، لہذا اس کو سمجھنا بہت اہم ہے. سب سے پہلے ضرورت ہے شیخ، ضرورت اس کی کیا ہے؟ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت ضروری ہے، یہ ایک عام بات ہے جس کو ہر ایک جانتا ہے، لیکن باقاعدہ تربیت کے لیے کسی ایک نیک شخص کے ساتھ، جس کو تربیت کا فن بھی آتا ہو اور اس کی صحبت میں برکت بھی ہو، تعلق کا ہونا ضروری ہو جاتا ہے. عادت اللہ یوں ہی جاری کہ کوئی کمال استاد سے سیکھے بغیر حاصل نہیں ہوتا. بس جب اس طرح طریقت میں آنے کی توفیق ہو تو استاد طریق کو ضرور تلاش کرنا چاہیے، جس کے فیض، تعلیم، برکت و صحبت سے مقصود حقیقی تک پہنچا جا سکے. سفر عشق پہ جانا نہیں رہبر کے بغیر، جو چلا عمر گزاری عشق کے اثر کے بغیر. یہ مولانا نور حسین کی شعر کا ایک ترجمہ ہے. چنانچہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے، بلا نیری کتابوں سے بھی کوئی کامل ہوا ہے؟ موٹی بات ہے کہ بڑائی کے پاس بیٹھے بغیر کوئی بڑائی نہیں بن سکتا، حتیٰ کہ وصولہ بھی بطور خود ہاتھ میں لے کر اٹھائے گا تو وہ بھی قاعدہ سے نہیں اٹھایا جا سکے گا. بلا درزی کے پاس بیٹھے سوئی پکڑنے کا انداز بھی نہیں آتا. بلا خوشنویس کے پاس بیٹھے اور بلا قلم کی گرفت اور کشش دے کے ہرگز کوئی خوشنویس نہیں بن سکتا. بس ہستی اگر کسی کو میسر تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس سے استفادہ کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. اس ہستی کو طریقت میں شیخ کہتے ہیں. ویسے تو شیخ عربی میں بوڑھے کو ہوتے ہیں, لیکن اس سے مراد رہبر کامل ہے جس کا پکڑنے سے مقصود حاصل ہونے کی کبھی امید ہوتی. پروسیس آف لرننگ, یہ بہت بڑا لمبا نظام ہے. یعنی خود بخود جو سیکھنے والا عمل ہے جس میں آپ کے سامنے نمونہ موجود نہ ہو, جس میں آپ کے پاس گائیڈنس موجود نہ ہو, تو ہو تو جائے گا بٹ اٹ ول ٹیک ٹو مچ ٹائم. اس کا ایک لمبا مطلب ظاہر ہے, آپ سوچیں گے کہیں گے سامنے آئے گا نہیں آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. اب یہ بات ہے کہ آپ جب کسی کو وہ جو چیز اس نے پہلے سے سیکھی ہوئی ہے, جب آپ اس سے سیکھتے ہیں تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں, اس کو کرتے ہوئے دیکھنا اور وہ خود گائیڈ کر کے دیکھ بتا دے. ہاں جی, یہ ان میں بھی فرق ہے, کیونکہ آپ خود کرتے ہوئے دیکھیں تو بہت ساری سٹیپس آپ سکپ کر لیں گے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, اور وہ ایک سٹیپ بھی سکپ کر لیا تو وہ چیز حاصل نہیں ہوگی, مطلب اس میں وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اب وہ خود گائیڈ کرے گا تو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی دے دے گا کہ ایسا نہیں, ایسا, ایسا نہیں, ایسا, ایسا نہیں, ایسا. پھر وقت پر غلطی کا ادراک, یہ بہت بڑا علم ہے, اور پھر اس غلطی کا درست کرنا, درست ہونا اسی وقت, وہ بہت بڑا علم ہے. یہ تمام چیزیں اگر ایک ریگولر گائیڈنگ سسٹم میں نہ ہو, ریگولر لرننگ پروسیس میں نہ ہو, تو ہو تو جائے گا لیکن اس کے لیے عمر نوح چاہیے ہوگی, اور ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں. اس وجہ سے ہمیں کرنا پڑے گا, کسی سے سیکھنا پڑے گا. دنیا کی نظاموں میں اگر دیکھا جائے, یہ لوگ ایجوکیشن کیوں لیتے ہیں, یہ بھی ایسے ہی ہے, لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں, ان تجربات کو لوگ اپنے پیپروں میں پبلش کر لیتے ہیں, پھر ان پیپروں سے لوگ دیکھ دیکھ کر ان کا پورا ایک بک تیار کرتے ہیں, اس بک کے بارے میں کافی سارے لوگوں کے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں, وہ پھر دوبارہ اس کے مطلب جانب جس کو کہتے ہیں یعنی جمع کیا جاتا ہے, اور پھر اس سے وہ چیز امپروو ہوتی جاتی ہے, فرسٹ ایڈیشن, سیکنڈ ایڈیشن, تھرڈ ایڈیشن, وہ چیز چلتی ہے, اور پھر اس کے بعد کوئی سکھانے والا اس کو سکھاتا ہے. تو اب یہ سارے نظام تعلیم و تربیت, یہ ایکسیڈنٹل تو نہیں ہے, ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی ہے. تو آرگنائزڈ ایکٹیویٹی کو ایکسیڈنٹل کرنے میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ ظاہر اسی میں بھی ہوتے ہوں گے. ہاں جی, اب مشائخ سے کیا پوچھنا چاہیے؟ بعض حضرات کو شبہ ہوتا ہے کہ جب کتابوں میں سب کچھ لکھا جا چکا ہے اور یہ معلوم بھی ہو چکا ہے جو چیز اختیاری ہے اس کے لیے ہمت سے کام لیں, جو اختیار میں نے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے, نیز مقصود ہو گیا مقصود کا پتہ بھی لگ گیا, یہ ساری باتیں حضرت خود سکھاتے ہیں تب ہی فرما رہے ہیں. تو پھر شیخ کی کس لیے ضرورت ہے؟ یا ان کی صحبت کو مفید تو ہے, لیکن اس سے کن چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہیے؟ ایک طالب کے جواب میں حضرت تعالیٰ حسن نے جو تحریر فرمایا اس کا لب لباب یہ ہے. حضرت کے جواب کا مفہوم یہ ہے کہ مقاصد, یعنی جن کے کرنے کا حکم ہے یا جن سے رکنے کا حکم ہے, وہ سب اختیاری ہمارے, باوجود اس کے سمجھ جانے کے کچھ غلطیاں سالک سے پھر بھی ایسی ہو سکتی ہیں کہ اصل مقصود حاصل نہ ہو. مثلا کبھی تو کوئی مقام حاصل ہو چکا ہوتا ہے, اس کو غیر حاصل سمجھتا ہے, بتانے والے نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا؟ بالخصوص تصوف کے اندر ایک عجیب چیز ہے, یہ چیز باقی نظاموں میں ہے ہی نہیں, ناممکن ہے جو اس کے اندر ہے. وہ یہ ہے کہ اب جو متکبر ہے اس کو تکبر کا پتہ نہیں لے کے میں متکبر ہوں, جیسے جیسے اسے تکبر نکلتا جائے گا وہ سمجھے کہ مجھ میں تکبر ہے, حتیٰ کہ جب بالکل ہی پاک و صاف ہو جائے گا وہ ہر امر کو اپنی تکبر کی طرف وہ کرے گا کہ یہ تو مجھ سے تکبر ہوا ہے. اب مجھے بتاؤ یہ پروسیس جو الٹا پروسیس ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ مجھ سے کسی نے کہا کہ کیا اپنی ترقی کا خود علم ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نہیں, اس کے لیے کسی اور کے بتانے کی ضرورت ہے, کیونکہ خود اپنے اوپر دھوکہ کا ہو گیا, آپ کی نظر ہی مختلف ہے. ہاں جی, آپ کا میٹر آپ کے لیے نہیں ہے, یہ کسی اور کے لیے ہے. ہاں جی, تو آپ اپنے میٹر سے دیکھیں گے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا, خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دے دو گے. ہاں جی, हाँ ये अलग बात है कि आपकी मीटर एन मुमकिन है किसी और के लिए काम दे रहा हो, आप किसी और के ऊपर तबसरा कर रहे हो तो एन मुमकिन है कि सही बात कर रहे हो अगर आपको एक्सपीरियंस उसका है। लेकिन दूसरे अब ये बात है कि इसको पता चल गया किसी और की नज़र की ज़रूरत है, तो और की नज़र एक रॉ हैंड शख्स का जिसका बाद में आपको एक साथ एक्सपीरियंस ना हो या उस चीज़ का बार बार ना हो, वो आपको सही गाइड कर सकेगा इस मसले में। एक शख्स है जिसके साथ आप मुसलसल रबे रखे हुए हैं, वो आपके बारे में सही बात बताएगा, खुद तो आप जान नहीं सकते अपने बारे में, तो दूसरे ही बताएगा। तो दूसरा दो सूरतें हैं ना कि एक तो ये कि बस मतलब एक आम किस्म का आदमी हो और उसमें सलाहियत तो कि आपकी गलती के बारे में बता सके, लेकिन एन मुमकिन है कि वो गलती ना हो, उसको सिर्फ गलती नज़र आ जाए किसी वक्ती तौर पे, ये भी बात हो क्योंकि आपके बाकी डेटा उसके पास नहीं है, वो इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन वाली बात प्रोसीजर उसके पास नहीं है, तो वो कैसे मतलब आपके बारे में सही मतलब कहेगा। तो उसके लिए किसी एक शख्स का जिसके पास आपका अच्छा खासा डेटा जमा हो चुका हो, यानी वो आपके बारे में बात करे तो फिर बात बनती है, वरना सिर्फ वक्त गुजारी हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है तसव्वुफ के अंदर है और बाकी चीज़ों के बारे में ऐसा नहीं है, वो बसोले वसोले वाली बात है तो वो तो हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये इस किस्म का चीज़ का आप क्या करेंगे। हाँ जी, बाकी चीज़ों के बारे में तो टेस्ट प्रोसीजर भी है, आप ब्लड टेस्ट कर लें, अब ब्लड का टेस्ट करने का वाले मशीन वो तो उसके नहीं है, वो तो एक दफ़ा भी आप जाएंगे तो आपको रिजल्ट वही देगा, और आप 50 दफ़ा भी देंगे तो रिजल्ट वही जो उसको समझ आएगा वही देगा आपको, लेकिन यहाँ तो वो चीज़ है नहीं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अल्लाह जल्ल शानहू की जो तायीद है किस निज़ाम के साथ है वो देख ली, मसलन जिस वक्त किसी शेख के पास आप होते हैं और वो शेख कामिल हो और साथ माशाल्लाह सिलसिला मकबूल हो, अब चूंकि देना तो अल्लाह ताला चाहते हैं और अल्लाह ताला को पता है कि इनके लिए कितनी मुश्किलात है, तो उसके दिल पर जो गाह गाह चीज़ें आपके बारे में आती हैं वो किसी और निज़ाम में कैसे आएंगी, वो तो यही आएंगी। जिन्हें खुद मुझे पता है, हालांकि हम लोग आपको पता है ना हमें कश्फ होता है ना हमें इस किस्म की चीज़ें होती हैं, बाज़ लोगों के बारे में वैसे जहन में आता है भाई ये किधर है, अगले दिन को पहुंच चुका होता है, अब ये क्या निज़ाम है उसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते, वो कौन सा कम्युनिकेशन सिस्टम है कि जो उसका ख्याल भी लाता है और फिर उसके बाद उस तक भी बात पहुंचती है और फिर वो बेकरार भी हो जाता है फिर वो पहुंच भी जाता है, तो ये बात हमारे बस में तो नहीं है। हाँ ये तो अल्लाह ताला का काम है। हाँ जी, खुद ही आ जाता है, इस मजलिस में भी एक शख्स ऐसा था, मैंने कहा किधर है, अभी इतकाफ में मौजूद। हाँ जी, तो मतलब ये कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से निज़ाम चलते हैं। अच्छा, बस रात को शुभ ये तो हो गया, मसलन कभी तो कोई मुकाम हासिल हो चुका होता है उसको गैर हासिल समझता है, मसलन किसी को मुजाहिद खुशू का मकसूद दर्जा हासिल हो चुका है लेकिन उसको गैर इख्तियारी वसावस पेश आ रहे हैं और वो ये समझता है कि अभी मुझे खुशू हासिल नहीं, और उसके गम में कुढ़ रहा है और इस गम में मुमकिन है कि कोई खुशू का कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल करना चाहे जिससे मजीद डिस्टर्बेंस हो रही हो, होते ना मतलब वो जिसको रास्ता मालूम नहीं है तो अपने आप को और भी जो आगे पीछे कर सकता है ना ढूंढने में। दूसरी तरफ बाज़ औक़ात जो मुकाम हासिल हो चुका होता है वो बदपरहेजी की वजह से बाकी नहीं रहता लेकिन ये गफलत की वजह से उसका इदराक नहीं कर रहा होता, मसलन पहले उसको खुशू का मकसूद दर्जा हासिल था लेकिन अब ये वसाविस से मुतासर होकर उसमें अपना इरादा भी शामिल कर लेता है जिससे वसाविस गैर इख्तियारी नहीं बल्कि इख्तियारी बन जाते हैं, लेकिन सालिक इनको गैर इख्तियारी समझ रहा होता है, कभी सालिक को गलत फहम हो जाती है कि उसने किसी रजीले पर काबू उका लिया है इसलिए उससे बेफिक्र हो जाता है। मुझे खुद पता है कि जब मैं पहले पहले नमाज पढ़ता था तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहता था, उस अलर्ट रहने का मिसाल अब यूँ समझ ले कि जैसे अनाड़ी ड्राइवर हो उस स्टीयरिंग के साथ चिमटा हो डर की वजह से कहीं आगे पीछे ना हो जाए और टेंशन में गाड़ी चला रहे हो, जाहिर नहीं आदमी जो होता है वो कैसे चलाता है। हाँ जी, तो अब ये है कि मतलब जा रहे थकन हो जाती है ऐसे आदमी को, बहुत जल्दी थकन हो जाती है। मैं बड़ा थक जाता था नमाज में, कि मैं हर चीज़ को जो है ना बल्कि फोकस कर रहा था, और ये और वो। हजरत को मैं बातें बताता था कि हजरत ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। हजरत मुझे सिखा था। एक दिन मैंने कहा, हजरत मैंने अपने आप को रिलैक्स कर दिया और मैंने बस जो कहा कि जो हाजिर इलम है उस पर अमल कर लो और उसके मुताबिक जो है ना मतलब चलो, हाँ अगर कोई मसला हो तो उसी वक्त सोचो, वरना बस नमाज के बारे में सोचो। अरे फरमाए अब बात बन गई, अब बात बन गई। अब ये मतलब जाहिर ये काफ़ी निगोशिएशन के बाद फिर ये बात पहुंची है ना। तो अगर कोई ऐसा ना होता मेरे पास तो मैं कैसे इस चीज तक पहुंच सकता था। ये तो अच्छा, फिर ये चलो मैंने आपको बता दिया तो आप समझेंगे, ओह ये तो तरीका हाथ में आ गया, चलो जी इसकी पूछने की फिर क्या जरूरत है। लेकिन हर शख्स का जो अपना अपना एनवायरनमेंट होता है उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा जो फर्क होता है उसके क्या करोगे भाई। कोई आदमी है बहुत ही ज्यादा, जिसको कहते हैं ना ने रिसर्चर है, उस रिसर्चर का इन्हमाक एक किस्म का है। हाँ जी, दूसरा कोई शख्स है वो दुकानदार है, तीसरा कोई मुलाजिम है, जो हर शख्स के अपने अपने ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस है। तो अब वो जो जिस वजह से मसला उसको हो रहा है वो तो अपना अपना यूनिक मसला होगा, तो उसकी वजह से उसके निज़ाम के ऊपर जो असर पड़ रहा है वो अपना अपना पड़ रहा होगा, डिविएशन होंगी अपने एक निज़ाम से। तो अगर किसी के साथ मुस्तकिल ना हो तो फिर मसाइल शुरू हो जाते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। कभी साले कोई गलतफहमी होती है कि उसने किसी रजीला पर काबू पा लिया, इसलिए उसे बेफिक्र हो जाता है, हालांकि मौका पर पता चलता है कि ऐसा नहीं था। मसलन दो चार खफीफ हादसों में रजा बिल कजा का एहसास हो गया तो समझा कि रजा का मुकाम हासिल हो गया है। फिर जब कोई बड़ा हादसा हुआ और उसमें रजा नहीं हुई या दर्जा मकसूद तक नहीं हुई, मगर इस धोखे में मिला कि रजा तो हासिल है, इस तरह हासिल को गैर हासिल समझने में यह खराबी होती कि मायूस होकर सालिक की हिम्मत जवाब दे जाती है और उसके हासिल करने की कोशिश तर्क कर लेता है। एक शख्स अंधा था, वैसे मिसाल आ गई, याद ज्यादा आ गई। एक शख्स मादरजाद अंधा था, उसका ऑपरेशन हो गया और उसको बिनाई मिल गई। अब वो बड़ा खुश था, उसको हर चीज नजर आ रही है कि मतलब जा रहे हो, जिसको नजर नहीं आ रहा था वो नजर आने शुरू हो गया तो कितना खुश होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी तो उसको परेशानी होने लगी, तो उसने रोना शुरू किया। तो किसी ने कहा, क्यों? कहते मेरे आंखें फिर खत्म हो रही है। उसने कैसे खत्म हो रही? कहते देखो ना अब अंधेरा हो रहा है। हाँ जी, कहते इसको शाम कहते हैं, ऐसे ही होता है इसमें, इसको शाम कहते हैं, इसमें ऐसे ही होता है। अब उसका उसका एक्सपीरियंस ही नहीं था कि ये भी होता है, क्यों? उसने कभी देखा ही नहीं था, उसने कभी देखा ही नहीं था। तब तो नफ्से अमारा के साथ होता है ना इंसान, पैदा तो नफ्से अमारा के साथ होता है, नफ्से मुतमन्ना तो आखिर में आता है। तो अब जो जो आता है तो उसका तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है। तो इस लिहाज से वो सोच भी गलत हो सकती है, मतलब कुछ कुछ से कुछ बन सकता है। अच्छा, फिर वो हासिल करदा नेमत भी सचमुच जायल हो जाती है और गैर हासिल को हासिल समझने में खराबी होती है कि इसका अहतमाम ही नहीं करता और महरूम रहता है। गैर रासिक को रासिक समझने में खराबी होती है कि सालिक तकमील का अहतमाम तर्क कर देता है और रासिक को गैर रासिक समझने का नतीजा परेशानी और तअत्तुल होता है। मसलन शहवत हराम का मुकाबला किया, उन्हीं ने जिक्र की वजह से आलम शौक में शहवत हराम का तकाजा ऐसे दब गया कि उसकी तरफ इल्तफात भी अब नहीं जाता था। फिर आसार का जोश खरोश कम होने से तभी इल्तफात गो दर्जे ज़ईफ़ में सही होने लगा। ये शख्स समझा कि सारा मुजाहदा बेकार गया और फिर इस्लाह से मायूस होकर सचमुच शहवत हराम में मुबतला हो गया। शैतान का काम यही होता है ना कि वो पहले गुनाह में मुबतला करता है कि कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, और फिर जब वो कर लेते हैं कि ओह बस अब तू मरदूद हो गया, अब तेरे इलाज नहीं है, तू तू ठीक ही नहीं हो सकता। तो जब अच्छी तरह मायूस कर लेते हैं, कहते फिर इस दुनिया के मज़े तो हासिल करो ना, वो तो तुम्हारा गया। ये मैंने लोगों की जुबान से बातें सुनी है, वैसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे ये दुनिया तो तबाह है ना, तो फिर चलो इसको क्यों छोड़े। ऐसा मायूस, अब ऐसे मायूस को अगर कोई डारस मिल जाए और सपोर्ट मिल जाए कि भाई नहीं अभी रास्ता गया नहीं। आज ही कोई मेरे ख्याल में मुझे टेक्स्ट मैसेज आया है, कहते आखिरी ताक रात है, जिन लोगों ने कुछ नहीं किया हो अब भी वक्त किया नहीं किया जा सकता है, चलो जी दो आंसू निदामती की बहाले, मुमकिन है उनके लिए ही लैलतुल कद्र हो जाए, आ जाए। बात तो सही की है उसने, बात तो उसने सही की है। हाँ जी, मुमकिन है उसके लिए यही ले। हजरत हजरत अब इब्ने अब्बास जो मुफस्सिर कुरान है, उनसे किसी ने पूछा हजरत बेहतरीन रात कौन सी होती है किसी के लिए, फरमाया लैलतुल कद्र। अब नस्ल कुरान से बिल्कुल सही बात है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, नस्ल कुरान से बिल्कुल सही है, जवाब तो सही है। किसी ने यही सवाल अली रज़ी अल्लाह अन्हु से किया, अब सुन लो सर दोनों, हजरत ने फरमाया जिस रात में किसी की तौबा कबूल हो जाए उसके लिए वो बेहतरीन रात है, जिस रात में किसी की तौबा कबूल हो जाए वो उसके लिए लैलतुल क़द्र है, काम तो उसका बन गया। लैलतुल क़द्र का होना ज़रूरी नहीं, अल्लाह पाक का राज़ी होना ज़रूरी है। लैलतुल क़द्र तो जानवर पे भी गुजरता है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा था बताए। हाँ जी, लैलतुल क़द्र का होना ज़रूरी नहीं, अल्लाह का राज़ी होना ज़रूरी है। अक्सर चूंकि लैलतुल क़द्र से राज़ी हो जाते हैं, लिहाजा सुभान अल्लाह बड़ी बात है, इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी और ज़रिए से अल्लाह पाक आपसे राज़ी हो जाए तो आपके लिए तो वही लैलतुल क़द्र है, आपका काम तो बन गया ना उसके साथ। तो इसको कहते इनपुट बेस्ड और आउटपुट बेस्ड। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जो यानी था मतलब जवाब वो इनपुट बेस्ड था, और अली करमुल्लाह वजू का जो था वो आउटपुट बेस्ड था। ठीक है ना, हमारे इंजीनियरिंग में भी दो किस्म के होते हैं ना, इनपुट बेस्ड, ये हमारे पंखे जो चलते हैं इनपुट बेस्ड है, उसको ज़्यादा बिजली दो तो ज़्यादा तेज़ चलेगा और कम बिजली दो तो कम चलेगा, ये इनपुट बेस्ड चीज़ें हैं, ये जलती नहीं है, मतलब कम वोल्टेज से जलते नहीं है, उसकी वजह कि वो इतना ही धक्का मिलेगा जितना कि उसके जान है और तो कुछ नहीं होगा। जबकि आउटपुट बेस होगा कि उसने उतना करना है, चाहे निज़ाम ही सारा ख़त्म हो जाए, करना वही है, वो चीज़ें जल जाती हैं। जैसे फ्रिज, रेफ्रिजरेटर है, ये मिसाइल पंप है, या कोई इस किस्म की चीज़ें, वो आउटपुट देता है, जितना आउटपुट उसको चाहिए वो देगा, उसको जितना देगा उतना करंट ड्रा करे, जितना करंट ड्रा करेगा वो ज़्यादा है तो गया, काम ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि जो यानी जो इनपुट बेस्ड चीज़ें हैं उसमें लैलतुल क़द्र की बात है कि लैलतुल क़द्र का इनपुट बहुत ज़्यादा है ना, मतलब आप जब बात करें कि उसका अजर बहुत ज़्यादा है। और आउटपुट बेस्ड यही है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जिस जब जिससे अल्लाह ताला राज़ी हो जाए, बस आउटपुट आपको मिल गया, जो लैलतुल क़द्र से मिलना था वो आपको वैसे मिल गया। भाई एक आदमी है, बहुत सारे सोना और बहुत सारे चांदी, बहुत सारे लाल जवाहर लाकर एक शख्स के सामने रख दिया, वो उससे खुश हो गया। दूसरा आदमी के पास कुछ नहीं है, वो उसके सामने बैठ के रो रहा है, कहते क्यों भाई क्या हो गया, कहते हजरत मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दूँ। अच्छा आ जाओ भैया, आ जाओ तुम मेरा भाई, अच्छा गले से लगा दिया, चलो उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। हाँ जी, उसने अपना कुछ न होना दे दिया, जो उसके पास कुछ भी नहीं है वो कहते हैं जान मतलब है कि वो दे। तो यही तो बात है ना, तो अल्लाह ताला को राज़ी करने के तो जितने तरीके हैं। हाँ जी, जिस तरीके से भी अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए तो आपका काम तो बन गया। हाँ जी, या अल्लाह, ये उसी ने सिखाया इसी वक्त जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, माशा, हाँ जी, किमास मालूमात से अमल हासिल नहीं होता, बल्कि इस निज़ाम असलाह की एक अमली तरतीब हुआ करती है जिस पर अमल इस वक्त हो सकता है जब साले किसी शेख की निगरानी में हो, और उसे भी पता चले कि मुरीद को शेख से अपनी असलाह के लिए कैसे राबता रखना चाहिए। और वो ये है कि मुरीद को अपना हाल जो कुछ भी है बिला कम उकास अच्छा है या बुरा शेख को बताना चाहिए। सालिक को ये इख्तियार नहीं कि वो किसी चीज़ पर अच्छे या बुरे का हुक्म खुद लगा दे। ये काम शेख का है कि वाक़ तो अहवाल के तसलसल में इसको क्या समझता है, वो चाहे मुरीद को इसके बारे में बताए या बग़ैर बताए इसको ऐसे तरीके बता दे कि उस पर अमल करने से उसकी बुरी हालत अच्छी हालत में बदल जाए या अच्छी हालत में मज़ीद तरक्की हो। और तो छोड़ें, अल्लाह पाक के इस निज़ाम के साथ इतनी ताईद है कि हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ मुरीद कहा करते थे उन दिनों, चूँकि लंबे लंबे फ़ासले थे, अब कोई कलकत्ता से लखनऊ ख़त लिख रहा है, कोई पेशावर से तानाबोन ख़त लिख रहा है, कोई मोहम्मद एजेंसी से ख़त लिख रहा है, अब वो ख़त पहुँचते पहुँचते टाइम तो लगता था, हफ्ता 10 दिन लग जाते थे, और वापस अगर जवाब आता तो वह भी हफ्ता 10 दिन लग जाते, तो उसकी वह है कि एक ख़त एक महीना का प्रोजेक्ट था। हाँ जी, लेकिन वो हजरात कहते थे कि हमें पता चल जाता कि हमारा ख़त पहुँच गया है, अभी जवाब नहीं आया होता था, लेकिन वो कहते हमें पता चल जाता कि हमारा ख़त पहुँच गया, क्योंकि हमारे हालात तब्दील हो जाते हमारे हालात तब्दील हो जाते। इसका क्या मसला है? इसका मसला ये है कि वही तवज्जो वाले जो कंसेप्ट कल्बी दुआ की, अब मैं ख़त पढ़ रहा हूँ, ख़त में कहते हैं किसी मसले का बताए कि पन सा हुआ है और उससे वो जो है ना वो निकल नहीं रहा, अब पढ़ते पढ़ते ही एक गैर महसूस तरीके से दुआ दिल से निकल गई कि अल्लाह इसकी मदद फरमा, मुश्किल में है। हाँ जी, बस वो दुआ तो अल्लाह के यहाँ रिकॉर्ड हो गया। हाँ जी, तो उसका असर वहाँ पर चला गया, तो अल्लाह तो हर जगह है। मुझसे किसी ने कहा कि भाई ये कैसे अल्लाह वालों को पता चलता है, मसलन दूर दूर एक दूसरे से मालूम हो जाता है ये क्या? मैंने कहा सेटेलाइट सिस्टम जो है ना, सेटेलाइट, तो आप इधर से फ़ोन करते हैं तो वो सेटेलाइट तक जाता है और सेटेलाइट से फिर उधर जाता है, तो इस लाइट के साथ दोनों कनेक्टेड है, तो वहाँ ऐसे जैसे दोनों एक जगह बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो मैंने कहा ये तो मान तो, कहता ये मान तो, मैंने कहा मलाए आला भी ऐसा ही है, मलाए आला हर जगह के लिए एक ही है, तो जिन दो का मलाए आला के साथ ताल्लुक है तो वो एक्सचेंज में मिले हुए हैं, इधर से भी उधर जाता है, उधर से भी इधर जाता है, इधर से भी उधर जाता है, इधर से भी उधर जाता है, बस ठीक है जी, इनके अपने आपस में कम्युनिकेशन है ना, उसकी कोई मुश्किल तो नहीं है। हाँ जी, तो ये जो होता है, मतलब ये स्पिरिचुअल मींस, स्पिरिचुअल मींस में ये चीज़ें हैं, मतलब ज़ाहिर अब हम साइंटिफिक मींस को माने और स्पिरिचुअल मींस को न माने तो फिर तो हमारा कोई अपना ही कसूर होगा ना। हाँ जी, तो ये चीज़ें तो हैं। बाज़ दफ़ा सालिक को इल्म तो होता है लेकिन तजर्बा नहीं होता, और इस्लाम में तजर्बा की अफादियत से कौन, इस्लाम में तजर्बा की अफादियत से कौन मुनकर है? बाज़ दफ़ा सालिक अपने लिए कोई अच्छी चीज़ तजवीज़ भी कर सकता है लेकिन अपने नुस्खों पर अमल से उसको इत्मीनान नहीं होता और तशवीश में मुबतला रहता है। यहाँ पर मुझे हजरत की एक बात याद आ गई, हजरत तानवी रहमतुल्लाह अलैह की, फरमाया जाड़े का बुखार हुआ, हकीम के पास गया, हकीम ने नब्ज़ देखी, नुस्खा तजवीज़ फरमाया, मैं पंसारी के पास भेजा, उसने मेरा नुस्खा बनाया, उन दिनों तो उस वक़्त नुस्खा बनते थे ना इस तरह, नुस्खा बनाया, मेरे पास आया, मैंने पी लिया और बेटी को गया। मैंने कहा वाह बड़े काम का नुस्खा आता है, उसको संभाल के रखा, जब कभी जाड़े का बुखार होगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, जब कभी जाड़े का बुखार आएगा तो उसको इस्तेमाल करेंगे, और है वो ऐसे ही हुआ। जब ऐसे हुआ तो क्या हुआ, अगली दफा भी जाड़े का बुखार आ गया। हाँ जी, अब मैंने वही नुस्खा बनवा लिया, पी लिया, ठीक नहीं हुआ, अब मैं गया हूँ मुफ्त तबीब के पास कि हज़रत पिछली दफ़ा का आपका जो नुस्खा था वो मैंने बनवा लिया, इससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, तो उन्हें बड़े बेनियाज से कहा अच्छा ठीक है अभी देख लेते हैं, तो फिर उसका नब्ज़ देखा, नब्ज़ देखे तो ओहो इस दफ़ा सफ़रा कुछ ज़्यादा आया हुआ है, कोई मसला नहीं, अभी ठीक करते हैं, वो नुस्खा दे दो। नुस्खा दे दिया, उसमें थोड़ी सी तब्दीली कर ली, फिर जब वो बनवा लिया वो पी कर ठीक हो गया। ये इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। है डॉक्टर साहब आपके पास ये इलाज? ये इलाज आपके पास नहीं, क्यों? आपने तो पेटेंट गोली लिखनी है, उसकी इंग्रेडिएंट्स आपके कंट्रोल में नहीं है, वो आपने उनको देना है। उसने कहना है आप गोली चेंज कर सकते हैं, इंग्रेडिएंट चेंज नहीं कर सकते। गोली चेंज करने में आपके पास इतनी ज़्यादा वो नहीं है, जिसको कहते हैं ना आज़ादी नहीं है। जो मार्केट में गोली बिकती है वही दोगे ना आप, और हर एक की अपने अपने इंग्रेडिएंट है। अब अपने एक्सपीरियंस से मुमकिन है आप अच्छा इंग्रेडिएंट तलाश करके कह दे कि हो जाएगा, लेकिन उसमें गलती भी हो सकती है, लिहाजा मसला अपनी जगह पर खड़ा रह सकता है। लेकिन वो जो हकीम होते थे ना, उनके पास ये जो निज़ाम था ना, ये मैं आपको बताऊं, वी लॉस्ट इट, इट इज़ मैटर ऑफ सारो। हाँ, कि हमने उसको ज़ाया कर दिया, वो नहीं रहा। वो जो नब्ज़ पे हाथ रखकर सही डायग्नोसिस होता था, और फिर इसके बाद वो इंग्रेडिएंट्स उनके कंट्रोल में रहते थे, थोड़ा तब्दीली कर ली, थोड़ा कम कर लिया, थोड़ा ज़्यादा कर लिया, आगे के भी कुछ ख़त्म कर लिया। ये चीज़ नहीं है अब रिसर्च। क्या ख्याल है डॉक्टर साहब, आपके पास है ये चीज़? नहीं है, बल्कि मैं अक्सर डॉक्टरों से मैंने कहा, मैंने कहा जो 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 इनकी है ना, मतलब तबीयतें, इन तबीयतों पे रिसर्च कर लो। ये वो सिर्फ चार समझते, आप उसको 16 बना दे। ये मतलब ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, मतलब इसको जो है ना, मतलब आप उसको कह सकते हैं, आप इस पे रिसर्च करके उसको 4 से 16 बना दे। लेकिन ये ग्रुपिंग है, मसलन सारे लोगों की बीमारियां एक जैसी नहीं होती। हम मानते हैं, कौन है जो नहीं मानता? सबकी बीमारियां तो एक जैसी नहीं होती। अब जब सबकी बीमारियां, तो क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये, यही तबीयत है ना, तबीयत इसको कहते हैं। अब अगर आपका रिसर्च ये कहता है कि आपके ग्रुप्स मौजूद हैं, तो आप अपने ग्रुप्स के मुताबिक जो इलाज करते हैं वो ज़बरदस्त। अब उन्होंने मज़ीद जो इस पे बहुत बड़ी रिसर्च की थी, और वो ये थी कि तबीयतें जैसे कि अफराद की है, इस तरह दवाइयों की भी है, और खाने पीने की चीज़ों की भी है तबीयतें। मसलन कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडी है, कोई चीज़ खुश्क है, कोई चीज़ मतलब जाने वो बलगम ही है। हाँ, इसी तरह लोगों के मिजाज भी है। अब जो बीमार हो गया उसके मिजाज के खिलाफ यानी अपोजिट वो चीज़ दो, मतलब जो है ना, गर्म को सर्द दो, सर्द को गर्म दो, इसको इलाज बेइज्जत कहते हैं। हाँ, खुश को तर दो, तर को खुश दो, हाँ जी, इसको इलाज बेइज्जत कहते हैं। तो ये चीज़ होती थी, और उनमें से बाज़ ऐसे काबिल डॉक्टर होते थे, नहीं हकीम होते थे, जो सिर्फ गज़ा तब्दील करने से इलाज करते थे, इसको इलाज बिलगज़ा कहते थे। मैंने खुद एक साहब को इस तरह देखा है, यही हमारे साथ ही थे, आकिब उसका नाम है, ये इलाहाबाद में। उसको हर वक्त सर में दर्द होता था, और वो बड़ा टाइट पगड़ी पहनता था। मैंने कहा क्या बात है? ये तो मुझे हर वक्त सर में दर्द होता है, इलाज वगैरह नहीं हो रहा था उसका। एक हकीम साहब कसूर से आए थे, उसने उसका कारूरा देखा और नब्ज़ देखा। उसे कहा कि भाई तुझे तुर्श चीज़ें खानी है, जितनी तुर्श हो वो आपके लिए मुफीद है, एक्सट्रीम के हद तक तुर्श बस तुझे खानी है। खैर, उसने उसकी बात मान ली। अब तुर्श चीज़ें जो अवेलेबल है, संतरा है या इस तरह, मतलब है कि तो उसे, हद तक कि वो इमली के शरबत बना बना कर पीने लगा। इमली की शरबत जो है ना, वो बड़ा तुर्श, उसकी हालत इतनी बदल गई कि उसको तुर्श चीज़ मीठी महसूस होने लगी। मसलन संतरा उसको दिया, बहुत तुर्श, उसने कहा ये तो मीठा है। मीठा कहाँ होता था उसके लिए, मीठा होता था क्योंकि जाहिर उसके साथ आदि हो चुका होता। तो ये सारी तब्दीलियां उसमें आई, और उसका सर दर्द ठीक हो गया, उसका सर दर्द ठीक हो गया, वो एक उसका मिजाज ही बदल दिया। तो मतलब मेरी ये है कि देखो, ये जो चीज़ है, ये चीज़ अब नहीं रही, अफसोस है, वी लॉस्ट इट। हाँ जी, खैर, شیخ سے جو بات معلوم ہوتی ہے اس سے تشویش ختم ہو جاتی ہے، جو کہ ایک سوئی کا ذریعہ ہوتی ہے. نیز طالب اگر مخلص ہے تو شیخ کی عدم موجودگی میں اپنے لیے مشکل طریقہ پسند کر سکتا ہے. اگر مخلص ہے کہتے میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں، جلدی ٹھیک ہو جاؤں، کہہ لو دوائی زیادہ، ہاں جی میں جلدی پہنچ جاؤ گی اپنی جگہ پہ، ٹھیک ہے نا. اچھا، کیونکہ وہ جلد اصلاح چاہتا ہے، جس کا تقاضا مجاہدہ زیادہ کرنا ہوگا. حالانکہ عین ممکن ہے کہ اپنی برداشت کا صحیح اندازہ نہ لگا سکتا ہو اور اتنا وزن اٹھائے کہ اپنی ریڑھ کی ہڈی توڑا دے، ہاں جی مہرے ہی نکلوا دے آپ تو پھر کیا کرے گا. ہاں جی، تو وہ یہ کہ وہ اور اپنی صحت سے بڑھ کر مجاہدہ کر کے اس میں ناکام ہو کر ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے، جبکہ تجربہ کار شیخ راستے کے مشکلات جانتے ہوئے اس کی استعداد اور حالات کے مطابق زیادہ آسان طریقہ اس کو بتائے گا، جس سے مقصود میں کامیابی ہوگی اور بشاشت حاصل کرے مزید ترقی کا بھی اہل ہوگا. جب کوئی سالک کام شروع کر کے شیخ کو اپنے حوال کی بے التزام اطلاع کرتا رہے اور اس کے مشورے کی اتباع کرتے رہے، اور یہ اتباع کام اس وقت ہو سکے جب اس پر اعتماد ہو اور شیخ کی بات کے ماننے کا خود کو پابند کرے، تو اس وقت اس کو محسوس ہوگا کہ شیخ کے بغیر مقصود تک رسائی عادتاً تقریباً ناممکن ہے. اس میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات میرے اپنے ایکسپیرئنس کے بنیاد پر. بعض ساتھی اینکشس ہوتے ہیں اپنے بارے میں، اوور ہوتے ہیں. مطلب آپ ڈاکٹروں کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، ظاہر ہے کچھ مریض ویسے آتے ہوں گے جو بس وہ انگزائٹی کی حد تک ہوں گے کہ بس بس میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں. اب یہ بات ہے کہ مثلا آپ نے ڈاکٹر کو ایک ڈیٹا دے دیا کہ یہ چیز ہو رہی ہے، اب اس سے ڈاکٹر کو تو پتہ چل گیا کہ فلاں چیز ہو رہی ہے، وہ باقاعدہ ٹیکسٹ بک میں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں میں اگر مریض کو بتاؤں تو اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، ممکن ہے کنفیوز ہو جائے. تو اس کے بارے میں اس کو بتاتا کچھ نہیں، لیکن ڈیٹا تو سٹور ہو جاتا ہے نا، اس کو پتہ تو چل گیا کہ یہ آدمی ایسا ہے. اب آئندہ کے لیے جب بھی اس کے ساتھ ڈیل کرے گا تو اس کو ایک انفارمیشن اس کے بارے میں موجود ہے. اب وہ چیز مریض کے لیے مفید تو ہے انفارمیشن دینا، لیکن اس جوابی انفارمیشن لینا مریض کے لیے ضروری نہیں کہ مفید ہو، اور نہ یہ کہ مطلب ڈاکٹر اس کو ضروری سمجھے کہ اس کو یہ بتایا جائے. اس صورت میں خاموش کہتے ہیں ہوں، بس ہوں کر کے خاموش ہو جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کہتا. اب مریض جو اینکشس ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو نا ڈاکٹر مجھے رسپانس نہیں دے رہا، ڈاکٹر مجھے رسپانس نہیں دے رہا، اس ڈاکٹر کو تبدیل کر لو. تو اگر دوسرے ڈاکٹر کے پاس بھی جائے گا تو وہ بھی تو یہی کرے گا، وہ کیا کر سکتا ہے، اپنے آپ سے کوئی چیز بنا سکتا ہے؟ اب اس کا مسئلہ ہی اگر ایسا ہو تو کیا کرے گا، وہاں سے بھی نامراد ہوگا، تیسری جگہ جائے گا تو تیسری جگہ سے بھی نامراد ہوگا. کیوں؟ مسئلہ اس میں ہے، مسئلہ شیخ میں نہیں ہے، مسئلہ تو اس میں ہے. وہ جہاں بھی جائے گا اپنا مرض اپنے ساتھ لے کے جائے گا نا، تو اس کے ساتھ مسائل تو پھر ہوں گے. تو یہ جو بات ہے کہ اکثر میں بتایا کرتا ہوں، بھائی تم لوگ مجھے اطلاع دے دیا کرو، لیکن مجھ سے ضروری نہیں کہ اطلاع آپ کو ہو، ہر وقت نہیں. اور میرا اپنا خیال ہے، اللہ کا شکر ہے مجھے اپنے بارے میں یہ اچھا گمان ہے، میرے خیال میں سب سے زیادہ میں بتاتا ہوں. آج کل مشائخ اتنا بتاتے ہیں، اگر کسی اور جگہ جائیں تو آپ کو بتائیں گے اتنے زیادہ؟ اللہ کا شکر ہے یہاں جتنا زیادہ بتایا جاتا ہے وہ کسی اور جگہ شاید بتایا بھی نہیں جاتا، وہ نہ وہ بتانا ضروری سمجھتے ہیں. ہمارے ہاں ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے الحمدللہ، ساتھ ساتھ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے بیس اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ ہاں جی، وہ گریز اناٹمی کا کوئی چیز ہو تو آپ اس کو کیا بتائیں گے آپ؟ آپ خاموش ہی رہیں گے نا، آپ کہتے بس ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہر چیز کا اپنا اپنا معیار ہوتا ہے. تو اگر کسی کو اپنے شیخ کے اوپر اعتماد نہیں ہے تو وہ ہمیشہ خوار وزار رہے گا، پریشان رہے گا، اس کا کام نہیں بن سکے گا، اس کا کام نہیں بن سکے گا. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کا جواب خاموشی ہوتا ہے، جس میں کچھ نہیں کہنا ہوتا، صرف نوٹ کرنا ہوتا ہے، बस ये बात काफ़ी है। बाकी जिस वक्त नोट हो रहा हो रहा हो रहा हो रहा हो वहाँ एक वक्त में आता है कि वो सारा कुछ आपको बता देगा, लेकिन उसके लिए वो मकाम का वक़्त का तायुन करना ये उसके ऊपर मुनसर है। हाँ जी, उसके ऊपर मुनसर है। तो ये वाली बात है, जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स 10 साल तक रहे, 10 साल जाने लगे मायूस। क्यों? उस मसला उसमें था, मायूस जा रहे थे। हजरत को अंदाजा हो गया कि ये शख्स मायूस जा रहा है, उसको बुलाया, भाई किधर जा रहे हो? कहते हजरत बस अपने घर जा रहा हूं। क्यों? हजरत 10 साल आपके साथ रहा हूं, आपके हाथ पर कोई करामत होते नहीं देखी। अब वो करामत का दिल दादा था। हाँ जी, आपके हाथ पर कोई करामत नहीं देखी होते। जुनेद रम से हमने पूछा, क्या इतने अरसे में आपने जुनेद से कोई ऐसा काम होते देखे जो जो सुन्नत के खिलाफ हो? कहा नहीं। उन्होंने कहा जुनेद की इससे बढ़कर करामत क्या हो सकती है कि उसने इतने अरसे में अल्लाह को नाराज नहीं किया। जाओ अपना काम करो। हाँ जी, अब ये इन्फॉर्मेशन उसको 100 साल में भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसने नाराजगी के साथ ले लिया, जल्दी की। अगर ये इन्फॉर्मेशन रजा के साथ लेता तो कितनी बड़ी बात थी, उसके दुनिया बदल जाती, लेकिन नाराजगी के साथ ले। हाँ जी, तो ये जो चीज़ है, मतलब ये है कि बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि इंसान लबे बाम आ चुका होता है और जल्दी करने की वजह से उसका पैर स्लिप होकर नीचे धड़ाम सरी पाड़ देता है। हाँ जी, तो इस वजह से इंसान को ये देखना चाहिए कि निज़ाम कैसा है। इसलिए कहते हैं शेख के मिजाज को समझना इस रास्ते का बहुत बड़ा स्टेप है, शेख का मिजाज समझना। अगर शेख का मिजाज ये हो कि मेरे साथ साथ रहो तो बस ठीक है, फिर वो साथ साथ रहो। और अगर शेख का मिजाज ये हो कि दूर दूर रहो लेकिन बात मानो, तो फिर दूर दूर रहो। शेख का मिजाज के सारा कुछ बताओ तो सारा कुछ बताओ, कहते शेख पता है बस खामोश रहो, सिर्फ देखते रहो, बस फिर देखते रहो। ये मिजाज समझना है। हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है। हाँ जी, हमारे साथ हज के मौका पर साथी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक साथी गए थे, मुफ्ती जहीर साहब भी हमारे साथ थे, मतलब उस दफा। तो मुफ्ती जहीर साहब का अपना तर्तीब है, हमारा अपना तर्तीब है, हर शख्स का अपना अपना तर्तीब होता है ना, मतलब जाहिर है वो मिजाज का फर्क जो होता है वो तो उसमें तो आता है ना। तो हम लोग उम्रे वगैरह सबसे आखिर में करते हैं, हमारे तरीक़ेकार ये, बल्कि जो रियाजुल जन्ना में भी जाते हैं तो वो भी सबसे आखिर में हम जाते हैं, हज में भी हम सबसे आखिर में जाते हैं, यानी आखिरी फ्लाइटों में होते हैं। ये निज़ाम है हमारा, बस मिजाज हमारे ऐसे है, इसी में अल्हम्दुलिल्लाह में आसानी नज़र आती। अब वो एंक्शस था, वो मतलब कहता था कि जल्दी जल्दी हो जाए सारा कुछ। तो एक दिन मुझे कहने लगा, शाह साहब मैं मुफ्ती जीर साहब के साथ उम्र कर लूँ? मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल कर लो। मुझे पता था क्यों, वजह क्या है, बाज सवाल जवाब के साथ होते हैं, बाज सवाल जवाब के साथ होते हैं कि मुझे ये बताओ यानी मेरे मुंह से वो निकलवाना चाहते हैं, जवाब पहले से उनके पास मौजूद होता है, यानी करना वो चाहते हैं, सिर्फ इत्तलाअन पूछते हैं, वो अमली तौर पे नहीं पूछते कि जो मतलब मैं उसको रोकता तो उसको बहुत सख्त नुकसान हो सकता था। हाँ जी, मैंने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, उम्रा करो, जरूर करो। चला गया, उम्रा कर लिया। शाम को मेरे पास कहे हजरत माफ़ करे। मैंने कहा क्या हो गया भाई, क्या नुकसान हुआ, क्या मस्त? बस कहते मैंने सिर्फ एक्सरसाइज किया है, मैंने उम्रा नहीं किया मैंने सिर्फ एक्सरसाइज किया। मैंने कहा क्या वजह? कहते बस मुझे पता चल गया जी, गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कहा चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने आपको एक इलम से नवाजा, ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मेरी ये है कि देखो, मिजाज शनासी वैसे भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। कहते तीन चीज़ें हर इंसान के लिए ज़रूरी है माहौल में रहने के लिए, यानी मर्दम शनासी, महल शनासी, हाँ जी, और मौका शनासी। ये इंसान के पास होना चाहिए। अब अगर आप आदमी आदमी को नहीं पहचानते तो लड़ाई और झगड़ा फसाद हर वक्त होगा। तुझे अटके लिए सूझिए हम बेजार बैठे, ऐसे आदमी के साथ अब बात करेंगे तो क्या होगा, हाँ मसला होगा ना। तो इस वजह से जो है ना, मतलब ये कि ये मर्दम शनासी और मौका शनासी, हाँ जी, ये जो है ना वो हर चीज़ का अपना अपना, और महल शनासी, मस्जिद में ऐसी बात कर लो जो बाजार में होनी है, गलत, हाँ जी। और इस तरह गम के मौके पर आप लतीफ़ा कहें तो गलत, हाँ जी। तो ये सारी बातें मौका शनासी, महल शना, मर्दम शनासी, ये तो क्या शेख के साथ ऐसा होना ज़रूरी नहीं है कि उसका मिजाज देखो जिसके साथ आपके इतने सारे लिंक्स हैं। शेख कामिल की पहचान, शेख के बारे में जब मालूम हुआ कि उसकी सोहबत कितनी अक्सीर है और बगैर उसकी राहबरी के मकसूद पाना बहुत मुश्किल है, तो ये भी लाजिम हो गया कि शेख कामिल की पहचान हो, क्योंकि खुदा नखास्ता किसी दुनियादार या अनाड़ी शख्स के हाथ में हाथ दे दिया तो उसकी मिसाल यूँ होगी कोई अपनी गाड़ी के लिए अनाड़ी ड्राइवर या किसी डाकू का इंतखाब कर लें। अनाड़ी में ये है कि वो आपको नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता लेकिन उसको फ़ायदा पहुंचाने की सलाहियत नहीं है तो नुकसान हो जाता है, अनाड़ी तो उसको कहते हैं। और डाकू वो तो चाहता ही है कि तुझे नुकसान पहुँचाए, तो ज़ाहिर मतलब है कि उसके लिए अनाड़ी होना ज़रूरी नहीं है बल्कि खिलाड़ी ही होना ज़रूरी है। वो खिलाड़ी होगा आपको नुकसान पहुंचाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने इसकी ज़रूरत महसूस करते शेख कामिल के पहचान की निशानियां कोल कोल के बयान किए हैं जो यहाँ दर्ज की जाती है। शेख वो है जो अमराज बातिना और अखलाक रजीला व हमीदा से पूरी तरह वाकिफियत रखता हो, सालिक से जो गलतियाँ हो सकती हैं उनको भी जानता हो और ऐसी गलती करने वालों की इसलाह भी कर सकता हो, नेक सलूक के मुख्तलिफ मराहल में उरूज नजूल से वाकिफ़ हो और नफ्स शैतान के असरात और मलकूती और रबानी तसरफात की पूरी वाकिफियत रखता हो कि इनके दरमियान तमीज़ कर सके। इसलिए शेख का साहिब फ़न और साहिब ज़ौक होना और साहिब ज़ौक और मुज्तहिद होना ज़रूरी है। अगर तरीक को महज की तो ये तसव्वुफ़ देखकर या लोगों से सुनकर हासिल किया हो और तरबियत करने के लिए बैठ गया हो तो मुरीद के लिए मोहलिक है, इसलिए कि वो तालिब और सालिक के हालात और वारदात और तगैर हालात को नहीं समझ सकता। जिसको इब्ने अरबी रहमतुल्लाह ने शेख के अलामात में मुख्तसरन तीन चीज़ों पर मौकूफ़ किया है, यानी ये दीन अम्बिया का सा हो, तदबीर अतिब्बा किसी हो, सियासत बादशाहों किसी हो, सियासत बादशाहों किसी हो का मतलब यह कि परवाह ना करे, मुस्तकनी हो और जिसको देखे तो एक नज़र में सारा कुछ मांग ले। हमारे दफ्तर में एक सिक्योरिटी गार्ड था तो उसकी आंखों में ऐसी ज़बरदस्त तासीर थी, उसको देखते कि उसे कहीं बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड है, कि मतलब यह कि वो उसके नज़र वो टेरती नहीं थी इधर 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 इधर। वो मैंने कहा यार ये बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड है क्योंकि इसकी नज़र जो है वो टिकती नहीं है, मतलब वो जो है ना वो इंफॉर्मेशन लेने वाले नज़र है। तो सिक्योरिटी गार्ड का काम यही होता है ना कि हर तरफ ख्याल रखे, और जो ऐसा हो सिक्योरिटी गार्ड के उसकी आंखें बंद हो रही हो, कभी कभी खुलती हो तो वो क्या सिक्योरिटी करेगा। तो ये शेख जो होता है ये भी सियासत बादशाहों किसी हो, मतलब ऐसे तिरछी निगाह से रखता हो कि उससे कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सके, हाँ जी, आप छुपाना चाहें भी तो ना छुपाया जा सके, बेशक कुछ न कहे लेकिन पता चल जाएगा उसको, हाँ जी, बताएगा किसी एक और वक़्त मतलब जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहरहाल वो लगता है जहन में रखता है। नंबर एक, अब ये आठ पॉइंट्स है जो अक्सर मैं बयान करता हूँ। शेख का अकीदा सही हो, यानी तफसील इसके ये है, शेख का अकीदा सही हो यानी सहाबा किराम के अकीदे और उसके अकीदे हों, जैसे कि इरशाद बारी ताला फ़ैन आमन बिमिस्ल मा आमन तुम भी फ़कद ही तदो वन तवल्लो फ़ैन नम फ़ी शिकाक فَسَكْفِي كَمُ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بس اگر وہ ایمان لے آئے جس طرح تم ایمان لے آئے تو بھی تو وہ بھی ہدایت پائے گا، اور اگر وہ نہ مانے تو وہی ضد میں پڑے ہوئے ہیں، سو تمہیں اس سے اللہ تمہیں ان سے اللہ کافی ہے، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. نمبر دو، اس کے پاس طلب العلم فرضتن علی کل مسلم کے مطابق فرض عین علم موجود ہو. فرض عین علم کا شرط ہم نے اس لیے لگائی ہے کہ فرض کفایہ علم الگ کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ خاص خاص لوگوں کے لیے ہے جو اپنا کام اس کے ذریعے سے کر سکیں. تین، اس پر عمل کرتا ہو. چار، اس کی صحبت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک پہنچتا ہو، جس کو شجرہ کہتے ہیں. پانچ، اس کو کسی بھی شیخ کامل سے تربیت کی اجازت ہو. ضروری نہیں کہ اپنے شیخ سے اجازت ہو، اس کی وجہ یہ کہ اپنے شیخ سے اجازت تو اکثر ہوا کرتی ہے، لیکن بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپنا شیخ فوت ہو جاتا ہے، ظاہر ہے زندگی موت کا تو کوئی پتہ نہیں. ہاں جی، تو دوسرا کوئی اس میں دیکھے کہ اس کو یہ چیز حاصل ہو گئی ہے تو وہ دیتے. ہمارے شیخ مولانا اشرف زاہ رحمۃ اللہ علیہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے، اور رنگ ان پر سلیمانی ہی تھا، اس لیے اپنی کتاب کا نام سلوک سلیمانی رکھا ہے. ہاں جی، لیکن حضرت فوت ہو گئے. حضرت روتے تھے کہ مجھے راستے میں چھوڑ دیا، مجھے راستے میں چھوڑ دیا. تو شاہ عبد الرزاق دعاجو رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں خواب آ گیا کہ وہ تشریف لائے ہیں مسجد میں، ان کی طرف متوجہ ہیں. وہ تبلیغی جماعت کے بزرگ تھے، تبلیغی جماعت کے بزرگ تو تبلیغ میں ہی رہتے ہیں ظاہر مطلب. تو کچھ عرصہ کے بعد اسی مسجد میں جس میں حضرت کو دیکھا تھا اس میں حضرت تشریف لائے تھے، تو ان کے ساتھ ملاقات ہوگی، ان کی مجلس میں شرکت ہوئی اور پھر ان سے بیعت بھی ہوئے. تو حضرت نے فوراً جاتے، چونکہ بات تو حاصل تو ہو چکی ہوتی. ہاں جی، تو فوراً اجازت دے دی. تو حضرت نے فرمایا نہیں تجھے چھوڑا نہیں تھا، یہ فرمایا تجھے چھوڑا نہیں تھا، مطلب یہ کہ وہ کام ہو چکا تھا، بس صرف ایک اس کی انڈورسمنٹ باقی تھی. تو انڈورسمنٹ کسی اور ذریعے سے ہو گئی بات پر. اب دیکھو ذرا تھوڑا سا اس نظام کو دیکھو، کتنا شفاف نظام ہے. حضرت کو جب اجازت دے دی تو یہ فرمایا کہ جو بھی اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آئے تو ایک منٹ بھی دیر نہ کرو. تو حضرت نے پوچھا کہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ تو بہت دیر لگاتے تھے بیعت کرنے میں، نہیں کرتے تھے اتنی جلدی بیعت، تو میں کیسے اتنا جلدی بیعت کروں گا؟ تو حضرت نے فرمایا بھائی وہ بیعت سلوک تھا، یہ بیعت ایمان ہے، آج کل ایمان کے بعد بنی ہوئی ہے. اگر آپ کے پاس آئے اور آپ نے انکار کر لیا، کسی بھی ایمان کے پاس چل گیا، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے فوراً بیعت کرنا چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی. پھر حضرت نے پوچھا حضرت مجھے جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی نسبت ملی ہے، یعنی ان کے ساتھ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں، تو کیا میں بیعت میں ان کا نام لے سکتا ہوں؟ اب دل تو ان کے ساتھ لگا ہوا تھا نا، دل تو سعید صاحب کے ساتھ لگا ہوا تھا. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ تو بددیانتی ہوگی، یہ تو بددیانتی ہوگی. ہاں آپ نام تو ان کا لے جن نے آپ کو اجازت دی، البتہ دعا میں ان کو شامل کر لیا کرے، دعا میں بتا دیا کرے کہ اللہ جو فیض مجھے ان سے ملا ہے تو وہ اس میں ان کو بھی مل جائے. تو یہ صحیح ہے، وہ تو اللہ پاک کو تو پتہ ہے، لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بے عین ہی یہی بات میرے ساتھ پیش آئی. کیسے؟ حاجی عبد المنان صاحب کو اوپر ایک حال تاری تھا، ہمارے حاجی صاحب ہیں ماشاءاللہ، جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں. مجھے کہا کہ نسبت تو حضرت کو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملی تھی نا، تو پھر ان کا نام آپ کیوں نہیں شجرہ میں لکھتے ان کے ساتھ؟ مجھے حضرت کی وہ بات یاد تھی. میں نے کہا حضرت نے خود یہ بات فرمائی ہے تو میں کیسے اس کے خلاف کروں؟ حضرت نے خود یہ بات فرمائی ہے کہ مجھ سے مشاب دلیج دو عجور سے میں فرمایا کہ نہیں، یہ تو سراسر بدیانتی ہوگی، البتہ آپ اپنے دعا میں ان کا نام ले सकते हैं। ये बात हुई तो खैर उनको तसल्ली नहीं हुई, उनका अपना एक जोक है, रंग है। फिर मुझसे कहा जी कोई बात नहीं कुछ करो। हाँ जी, फिर मैंने इस्तखारा किया। इस्तखारे में हज़रत सईद सुलेमान रहमतुल्लाह से मले ने फरमाया, बल्कि सवाल हुआ उनसे, कोई और सवाल कर रहा है, मैं नहीं, कोई और उनसे सवाल कर रहा है कि हज़रत क्या आपने मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह को इजाज़त दी थी? तो हज़रत ने फरमाया मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी थी, मैंने किसी को इजाज़त नहीं दी थी, और अगर किसी को देता तो वो मौलवी अशरफ ही होते, अगर किसी को देता तो वो मौलवी अशरफ ही होते, क्योंकि उनको नस्बत मुंतकिल हो चुकी थी। अब ये एंडोर्स हो गया, बात हो गई, लेकिन है ख्वाब की बात, यानी मतलब उसकी बात है ना, यानी वो बराह रास्त वाली बात नहीं है। इस पर जो है ना ऐसी बात हुई कि पूछा उस शख्स ने कि हज़रत क्या हम आपका नाम उनके साथ लिख सकते हैं, क्योंकि आप फरमाते हैं ना कि नस्बत उनको मुंतकिल हो चुकी थी, तो उनका नाम आपके आपका नाम उनके साथ लिख सकते हैं? फरमाए ये तो शफाफियत के ख़िलाफ़ है, ये तो शफाफियत के ख़िलाफ़ है। समझ में आ गई ना बात? मतलब ये शफाफ नहीं रहेगा, ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, एक ज़न्नी चीज़ को आप यकीनी मान लेंगे, उसूली बात, ज़न्नी बात को आप ये कतई नहीं कह सकते। अब जो कश्फ है या ख्वाब है या और इस किस्म की चीज़ें, तो ज़न्नी बातें होती हैं। अब ज़न्नी बात से इंफॉर्मेशन तो आपको मिल सकता है, लेकिन आप इसको कोर्ट नहीं कर सकते बतौर विटनेस, क्यों किसी अदालत में किसी ख्वाब को आप पेश कर सकते हैं? अदालत वाले ख्वाब को मान लेते या कश्फ को मान लेते, वो तो एक जीता जागता विटनेस उनको चाहिए होता है। तो फरमाइए तो शफाफियत के ख़िलाफ़ है। तो मैंने फिर सारी बात हज़रत के सामने अर्ज़ की, मैंने कहा हज़रत माफ़ी चाहता हूँ, जो हमें पता चला है वो ये है। फरमाए फिर ठीक है, बात ख़त्म हो गई। असल में अल्लाह पाक ने हमें एक चीज़ देनी थी आजी साहब के ज़रिए से, एक क्ल्यू देना था, एक तरीक़ाकार समझाना था, तो अल्लाह पाक ने रास्ता बना लिया और इसके ज़रिए से हमें इतना बड़ा इलम हो गया कि इस मसले में कितनी शफाफियत है, उसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी को दखल नहीं दे सकते। उसका फेज जारी हो या न, सबको महसूस होता हो, वो इस्लाह करता हो मरम्मत नहीं है, उनकी मजलिस में हुब्बे इलाही पैदा होता हो और दुनिया के मोहब्बत से दिल सर्द हो रहा होता हो, जिसमें ये अलामत पाई जाए, उसकी सोबत को अपने लिए अक्सीर आज़म समझे, वो शख्स इस काबिल है कि उसको शेख बनाया जाए और उसकी ज्यारत व खिदमत को अपने लिए सआदत समझे, इन कमालात व अलामात के बाद पर शेख कामिल में कशफ व करामात तसरफ खवारिक वगैरह को हरगिज़ ना देखे कि इनका होना शेख कामिल के लिए ज़रूरी नहीं। मुनासिबत शेख, यह हमारे तजर्बे से साबित हो चुके कि फ्यूज़ बातिनी के लिए पीर व मुरीद की बाहमी मुनासिबत फितरी शर्त है, क्योंकि नफ़त आदतन उल्फत पर मौकूफ़ है और जो मुनासिबत फितरी की हकीकत है, और यही मुनासिबत है जिसके न होने पर मशायख तालिब को अपने पास से बस दफ़ा दूसरे शेख के पास जिसके साथ मुनासिबत ज़ोन या कश्फ से मालूम भेज देते हैं, लेकिन उससे इनकार नहीं करना चाहिए। अगर शेख किसी को कह देना कि आप फलां के पास जाए, बेशक बैत मेरी रहे, कोई मसला नहीं, क्योंकि बैत तो सिर्फ एक बरकत है, लेकिन तरबियत में तो मुनासिबत ज़रूरी है। ये हो चुका है हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह और मदनी रहमतुल्लाह अलैह, उनके यहाँ हो चुका है। कैसे? ये मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए थे बेत होने के लिए, हज़रत उनको हज़रत तानवी रहमत साहब के पास ले आए। ऐसे मोहब्बत थी इनके आपस में, और लोग कहते पता नहीं क्या क्या, उनको हज़रत तानवी रहमत साहब के पास ले आए कि हज़रत आप इसको बेत फरमाएं। तो मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी फरमाते हैं कि ज़रा थोड़ा सा हट के उनने उनसे फरमाया हज़रत तानवी से कि हज़रत आप उसको बैत फरमाए, तो हज़रत ने उनसे पूछा आप क्यों उनको बैत नहीं करते? کہتے ہیں حضرت میں اس کا اہل نہیں ہوں. کہتے ہیں کہ مجھے میں نے جب یہ سنا تو میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو گیا کہ اتنا بڑا شیخ بھی جھوٹ بول سکتا ہے. ہم تو اس کے بارے میں آئے کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ کہ یہ تو اتنا کامل ہے اور یہ کہتا ہے میں اس کا اہل نہیں ہوں. آج تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی نہ جنید و شبلی آپ ہے نہ میں ہوں, یہ تو ہم دونوں کو پتا ہے, نہ جنید و شبلی آپ ہے نہ میں ہوں. جہاں تک تربیت کی بات ہے وہ آپ بھی کر سکتے میں بھی کر سکتا ہوں, تو چلو ایک کام کر لیتے ہیں, بیعت آپ کر لیں تربیت میں کر لوں گا. اور حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ سب سے بیعت ہوئے اور تربیت پوری حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے کی, اور خلافت بھی حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے دی ہے. یہ ایسی زبردست چیزیں ہوتی ہیں, مطلب تو اس کا مطلب ہے کہ برکت جو ہے وہ تو کسی بھی سلسلے سے آ سکتی ہے, برکت مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ تربیت ہے, تربیت میں مناسبت ہونا شرط ہے, تربیت میں مناسبت ہونا شرط ہے, برکت میں شرط نہیں ہے. برکت جو ہے نا برکت تو آپ کسی بھی ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں. ہاں تو یہ بات بہت عام ہے کہ مناسبت کا ہونا تربیت کے لیے ضروری ہے. تو اب اگر کسی شیخ کو پتہ چل جائے انٹریکشن سے بھائی ان کو میرے ساتھ وہ مناسبت نہیں ہے جو مناسبت اس کو ہونا چاہیے, اور وہ نیک نیتی سے سمجھے کہ اس کو فلاں صاحب کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے, تو ان کو کہہ دے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور آپ اس کی بات مانیں, اور وہ ایسے جیسے میری بات آپ مان لیں, کیونکہ مقصد یہاں دکانداری تھوڑی ہے, مقصد دکانداری تو نہیں ہے, مطلب ظاہر مقصد تو فائدہ اٹھانا ہے نا, تو فائدہ اٹھانے کے لیے اب جس کو پاس بھی بھیج دیں. سبحان اللہ, بالکل ٹھیک. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا ایک مرید سیاست کا دور تھا, خلافت تاریخ چل رہی تھی, حضرت کا اپنا نقطہ نظر تھا اور دوسرے حضرات جن میں شیخ ہلند رحمۃ اللہ علیہ حضرات تھے ان کا اپنا نقطہ نظر تھا. وہ عالم چونکہ علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے والا تھا, تو انہیں کہ حضرت اگر آپ بھی یہ خلافت تحریک کی حمایت کرتے نا تو مسلمانوں کے لیے بہت فائدہ ہو جاتا, یہ تقسیم نہ ہوتے. تو حضرت نے فرمایا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت زبردست بات آپ نے کی, الحمدللہ آپ امت مسلمہ کے خیر خواہ ہیں اور ان کے لیے بلا سوچتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سے بہت کام لے لے. بڑی دعائیں دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اب آپ کسی اور جگہ اپنے لیے انتظام کر لے, کیونکہ آپ کو مجھ سے فائدہ نہیں ہوگا. اب یکدم اس کو شوق لگا, یہ حضرت نے کیا فرمایا کہ حضرت میں نے اس لیے, نہیں نہیں بھائی اس لیے والی بات نہیں ہے, یہ ایک طریقہ کار ہے, جب تک مناسبت نہ ہو تو اس وقت تک تو فائدہ ہو نہیں سکتا, تو اس وجہ سے آپ میں مطلب جو ہے نا میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ مطلب کسی اور جگہ اگر آپ کو خود معلوم ہو تو چلے جائیں, نہیں تو میں بھی آپ کی مدد کر سکتا ہوں, میں آپ کے لیے ڈھونڈ سکتا ہوں, عین ممکن ہے کہ میں آپ کی ہیلپ کروں, تو آپ اس میں کوئی مطلب غلط نہ سوچیں. آپ کو مقصد اپنی تربیت کروانا ہے, تو اس حالت میں کہ آپ کو ذہنی کلیش ہے کہ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو میں سمجھتا ہوں ایسا, تو یہ تو عمر بھر یہ لگا رہے گا تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. کیسے خوبصورت بات ہے, بس یہ راستہ اخلاص کا ہے, یہ راستہ اخلاص کا ہے, اس پر ہی چل کر انسان مطلب کامیاب ہو سکتا ہے. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیوں بعض دفعہ دوسرے شہر کے پاس جن کے ساتھ مناسبت ہونی اکشف سے معلوم ہو بھیج دیتے, کیونکہ اس طریق میں مسلح کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی ضروری چیز ہے, مناسبت کے بغیر طالب کو نفع نہیں ہو سکتا, اور مناسبت شیخ جو فیض لینے اور دینے کا درمدار ہے, اس کے معنی یہ کہ شیخ سے مرید کو اس قدر انس ہو کہ شیخ کے کسی قول و فعل سے مرید کو دل میں طبعی نکیر پیدا نہ ہو. اسٹیٹمنٹ پہ غور کریں, عقلی نہیں طبعی. ये वही वाली बात है जो हजरत ने बताई कि उसको तभी नकीर हो गई ना, कुड़न महसूस हुई। तो फरमाया कि कैसे हो, कि तभी नकीर पैदा ना हो, गो अकली हो। यानी शेख की सब बातें मुरीद को पसंद हो और शेख को मुरीद से इनकबाज ना हो, और यही मुनासिबत बेहद के लिए शर्त है। लिहाजा पहले मुनासिबत पैदा करने का अहतमाम करना चाहिए कि इसकी सख्त ज़रूरत है। जब तक ये ना हो, मुजाहदात, रियाजत, मुराकबात, मुकाशफात सब बेकार हैं, कोई नफ़ा नहीं होगा। अगर तभी मुनासिबत ना हो तो अकली पैदा कर ली जाए, इस पर ही नफ़ा मौकूफ़ है। इसलिए जब तक पूरी मुनासिबत ना हो तो बेअत नहीं करनी चाहिए। ये वाली बात, उसकी वजह यह है कि अगर ये ना हो तो फिर रास्ता लंबा होता जाएगा, टाइम ज़्यादा लगता जाएगा, और बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वो नहीं फ्लैट सरफेस इंक्लाइंड, उसके ऊपर चढ़ रहा हो। जी हाँ, बेत ईमान के लिए तो ये नहीं है, बेत ईमान के लिए तो बस अड़ा रहना काफ़ी है, लेकिन बेत सलूक के लिए तो है। मैंने एक दफ़ा इरादा किया, मैंने कहा अब मैं किसी को बेत नहीं करूँगा। उसकी वजह यह है कि बस जितने बेत हो गए उनकी तरबियत हो जाए काफ़ी है, भीड़ लगाना तो ज़रूरी नहीं है, और ना सा इतने सारे लोगों के इसलाह आदमी कर सकता है, मुश्किल होता है, ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो इरादा कर लिया, इतने में हजरत मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की किसी को ज़्यारत हो गई। हजरत फरमाया सो कहना, इससे कहना कि बेत न छोड़े, ये आजकल ईमान की बात है मुश्किल। तो ऐसा ना हो कि आपने बेत करना छोड़ दिया और लोग बेईमानों के पास चले जाएं, तो बेत करना ना छोड़े। अब चूंकि हजरत का हुक्म है तो मैं बेत कर लेता हूँ, मजबूरी, अब क्या करूं, मैं तो इनकार नहीं कर सकता। मुझे तो एक किस्म की एक हुक्म मिल गया ना कि इनकार ना करूं, तो मैं तो इनकार नहीं करूँगा। लेकिन लोगों की जिम्मेदारी तो है ना कि वो देखे ना, अगर किसी के मेरे साथ मुनासिबत नहीं है तो, और बेहतर सलूक करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को देखें, मतलब ज़ाहिर उनका, तो मैं तो इनकार नहीं करूँ क्योंकि मुझे तो हुक्म है, मेरे पास तो जो भी आ गया तो मैं उसको बेहतर ईमान के नुक्ता नज़र से बेहत कर लूँगा कि ऐसा ना हो कहीं नुकसान मेरे गले ना पड़ जाए, और आगे कोई कह दे, आगे कहा जाए कि तेरे पास आया तो था, तूने क्यों नहीं लिया, फिर मैं क्या कहूँगा। ये हलीमी साहब ने ऐसे किया था ना, हलीमी साहब गए थे मौलाना अब्दुल करीम साहब के पास, ख्वाब में हजरत तानवीर अहमद साहब की ज्यारत हुई थी कि उनके पास जाओ, मेरा बेटा उधर मौजूद है बटखेला में। और वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने जा कर कह दिया कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है, ख्वाब में हजरत तानवीर अहमद साहब ने मुझसे फरमाया है। तो हजरत बड़े ही जलाल वाले बुजुर्ग थे, ख्वाब तू नहीं देखे, मैं नहीं देखा, तेरा ख्वाब मेरे पर हुज्जत नहीं है। वसूली बात तो यही थी, किसी और का ख्वाब तो किसी के ऊपर हुज्जत नहीं है, लेकिन ये भी तो काका खेल थे, काका खेल होता है। ये उल्टे बाहर चले गए और फिर अपना चेहरा अंदर करके, ठीक है जाता हूं लेकिन क्यामत में तेरे गरबान पकड़ूंगा कि मैं आया था तूने मुझे नहीं लिया था। हजरत ने कहा घुसता अंदर आ जाओ, बैठो यहां पर, बड़ी बातें बनाते हो, डर तो गया ना। डर तो गया ना, क्योंकि उसने तड़ी ऐसी दे दी ना कि क्यामत में मैंने तेरा गला पकड़ना है, मैं तो आया था तूने नहीं लिया था। तो फिर तो बस फिर उसको बिठा दिया। फिर हजरत ने उनकी जो तरबियत फरमाई है, कहते मौलाना अब्दुल हमीद उर्मुज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने तो मुझसे बड़े नरम नरम हाथ रखा था, और इनने फिर वो सारी बातें मुझ पर गुजार दी जो हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह किया करते थे। हाँ जी, उठा उठा पटाख पटाख के। हाँ जी, कहते एक दिन मैं किसी, सब अफसर थे उस इलाके के, किसी ने दावत में मतलब बुलाया था, दावत हुई थी इसकी, हजरत को पता चला कि आज इसलिए नहीं कि किसी दावत में गए। जब पहुंच गए, दावतें खाते हो ये तेरा वतीरा है, तो वो कटोरा उनका होता था जिसमें पानी भी पीते, जिसमें शोरबे में चोरी भी करते थे, मतलब वो रसीद बनाते, तो उसी में शरीद इस तरह हाथ इस तरह तरह के जैसे गिनाती हो, हाँ जी, और इस तरह करके खूब जो है ना, मतलब जो है ना वो उसको कर लिया। फिर कहा ये खाओ। हाँ जी, तो कहते मेरे लिए तो बहुत बड़ी सादत की बात थी कि हजरत ने अपने हाथ से चोरी बनाई है, तो मैं क्यों ना गाता। तो मैंने बड़े मज़े से गाना शुरू किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने हजरत क्यों किया, इस तरह करने की क्या जरूरत है, बस अच्छी तरह आराम से रोटी इसमें डाल के कर आपको देता ना, तो क्या मसला था उसमें। कहते देखना चाहता था कि तुम अपने शेख से गिन आती है या नहीं आती। तब इन्हें मुनासिबत, इनको अपने शेख से गिन आती है या नहीं आती है। ये मोहब्बत का सौदा होता है ना, आम आम लिहाज से तो गिन आनी चाहिए, लेकिन मोहब्बत वाले को आती है मोहब्बत वाले को नहीं आती, हालांकि काम एक ही है लेकिन एंगल का फर्क है। जिसको कहते हैं ना जाविये नुक, मतलब नजर जो है ना, उसको उसके हिसाब से फर्क है। कहते ये बात नोट कर ली गई। कहते फिर इसके बाद चंद दिनों के बाद मुझे कहते हलीमी, ये फलां के लिए बददुआ करो ना, ये तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाता है, नुकसान, तेरे खिलाफ बातें करता है, तेरे खिलाफ सारे साजिशें करते हैं, उसको बददुआ करो, इसके लिए बददुआ करो ना। वो एक खान थे जिनके घर से हजरत के लिए खाना आता था, उस इलाके का खान था। उसके बारे में कहा, उनने कहा हजरत ने जरूर बददुआ करता, लेकिन जब जिनके घर से मेरे शेख के लिए खाना आता हो उसके लिए तो बदवा नहीं कर सकता उसके लिए तो बदवा नहीं कर सकता। बस यही दो, कहते यही दो टेस्ट मेरे लिए हैं। फिर उसके बाद मेरे लिए कालीन बिछाया करते थे, जब मैं कभी जाता था तो कालीन बिछाते, कहते इस पर बैठो। हाँ जी, और कोई मसला था तो बेटों ने कहा जी हम जाते, कहते नहीं तू नहीं कर, हलीमी को कह दो वही कर लेगा, तुम कर ही नहीं सकते हो। तो फिर बोला इतमाद, मतलब गोया के। और एक दिन हजरत मौला फकीर मोहम्मद साहब राम तशरीफ लाए थे, तो मेरे हाथ लेकर उनके हाथ में दे दिया कि मेरे बेटे मैं तेरे सपर्द कर रहा हूँ। हाँ जी, कहते मुझे समझ नहीं आई, लेकिन चंद दिनों के बाद हजरत फौत हो गए। तो चूंकि पता चल गया था कि हजरत मौला फकीर मोहम्मद साहब के हाथ में मेरे हाथ दिलवा दिए थे, तो बस तश्कील मालूम थी, तो फिर मैं हजरत के पास जाने लगा। तो मकसद मेरे ये है कि अल्लाह अकबर, मुनासिबत, हाँ जी ज़रूरी है। यानी शेख की सब बातें मुरीद को पसंद और शेख को मुरीद से इनके बाद ना, और यही मुनासिबत बैत के लिए शर्त है। ये हो गया शेख कामिल की सोहबत के फ़ायदे। नंबर एक, शेख के अंदर जो चीज़ें वो आहिस्ता आहिस्ता मुरीद के अंदर आ जाती है। नंबर दो, इस्लाह कामिल न भी हो तो कम से कम अपने अयूब नजर आ जाएंगे जो इस्लाह की कुंजी है। नंबर तीन, आहिस्ता आहिस्ता मुरीद पर शेख का रंग चढ़ता जाता है, जिससे वो शेख के अखलाक व आदात में इतबा करने लगता है। शेख की सोबत में जो अफादात जुबानी सुनने में आता है, वो या तो शेख की उम्र भर के तजुर्बे के निचोड़ होते हैं जिसका मुफीद होना तो जाहिर है, या शेख के कल पर मुरीद इनके लिए इनके मुनासिब मजामीन इल्का किए जाते हैं जो तीर बहादुर नुस्खे होते हैं। चार, शेख के सामने अपने हेच होना मकशूफ हो जाते हैं जो तवाजु की कुंजी है। पांच, आले मोहब्बत की सोबत से मुरीद के दिल में भी मोहब्बत पैदा हो जाती है। छः, मशायख अमाल साले की वजह से बाबरकत होते हैं, इसलिए उनकी तालीम में बरकत होती है, इसके मुकाबले में खुद किताबें देखकर इलाज करना मुफीद नहीं हो पाता। सात, मकबूलिन इलाही के सोबत में अगर आदमी इखलास के साथ रह रहे हो तो या तो उसकी हालत अच्छी होगी या बुरी। अगर अच्छी होगी तो उसे हजरात खुश होंगे और दिल से उनके लिए दुआगो होंगे, जिससे उनकी मजीद तरक्की हासिल होगी, और अगर बुरी है तो शेख को उस पर शफकत होगी, उसकी इसलाह करेंगे तालीम से और दुआ से, इसलिए सोबत से हर सूरत फ़ायदा हुआ। आठ, मुरीद जब शेख की सोबत में होता है तो शेख के कमालात उस पर ज़ाहिर होते हैं, दिन पर चलने का जो सलीका उनको अता होता है वो मुरीद को इस सोबत से आहिस्ता आहिस्ता मिलने लगता है। दूसरी तरफ शेख पर मुरीद के अयूब मुनकशिफ होते रहते हैं, इसलिए मुरीद के बारे में बेहतर से बेहतर राय कायम कर सकते हैं, जिससे मुरीद की इसलाह काफ़ी तेज़ हो सकती है। नौ, इन हजरात के दिल खुदा की याद से रोशन होते हैं, इनके पास रहने से वो नूर आहिस्ता आहिस्ता मुरीद के दिल में भी आ जाता है। नूर जब आता है तो जुल्मत ख़त्म हो जाती है, इसलिए मुरीद पर अपनी हैसियत और अल्लाह ताला की अजमत मुनकशिफ होने लगती है, जिससे उसकी कल्बी बीमारियों की असलाह खुद ब खुद होने लगती है और उसके अशकालात भी हल होने लगते हैं। दस, शेख की खिदमत में रहकर बुजुर्गों की खिदमत का मौका मिल जाता है, बाद कबूलियत की कोई ऐसी घड़ी मिल जाती है जिसमें शेख के दिल में उसके लिए ऐसे जज्बात पैदा हो जाते हैं जिससे ये बहुत जल्दी वासिल हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है। हजरत को अल्सर की बीमारी थी तो सेवन अप वो पीते थे, तो उनके जितने मुरीद थे उनको भी सेवन अप के साथ मोहब्बत हो गई, तो भी सेवन अप पीते थे। तो एक दिन हम बैठे, मेरा तो खुद अपना हाल था, मैं सेवन अप पीता था, कोई और चीज़ नहीं पीता। तो ज़ाहिर हमने एक दूसरे को बताया तो नहीं था, लेकिन मामला सबका यही था। तो खैर ऐसा हुआ कि एक दिन मियाँ बशीर का खेल जो होते हैं, उनने कहा कि हजरत ये सेवन अप तो आपके मुरीदों के लिए आपकी सुन्नत हो गई, वैसे बरसबीर तस्करा बात आ गई। तो हजरत ने फरमाया अल्लाह मेरे सारी मुरीदों को जन्नती बना दे। वो मेरे सही बात है कि वो ऐसे हजरत के दिल से निकले हुए अल्फाज थे कि बस हमें यकीन हो गया कि ये दुआ इंशाल्लाह कबूल है। क्यों, हजरत खुद अपनी मर्जी जब दुआ देते तो वो पेशनगुई, तो हजरत ने दुआ वो दी कि जिसमें सारे सिस्टम बाईपास कर दिए, अल्लाह ताला मेरे सारी मुरीदों को जन्नती बना दे, उसमें क्या चीज़ रह जाती है। हाँ जी, तो ये मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि कोई मौका ऐसा होता है। इस तरह मैंने वो जो दो गज़लें पेश की थी, एक नात शरीफ और एक एक वाक़ियात पर वो था, तो हजरत के दिल से दुआ निकली अल्लाह ताला आपसे अच्छा कहलवाए, तो उसका नतीजा सामने जाहिर है ना, वो नज़र आ रहे, बस वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मतलब उसके बरकत से ये चीज़ हो रही है। इस तरीके से हजरत की किताब पे प्रूफ रीडिंग का काम हुआ था, और टाइप उसका जो टाइपिंग का और मतलब जो है ना वो जन उसका सलूक सुलेमानी जो दूसरा हिस्सा था उसमें और तीसरे हिस्से में। खैर हजरत तो दुआएं तो करते रहते थे, उनका तो तरीका था ही दुआ का। लेकिन मौलाना अब्दुल कयूम हक्कानी साहब ने मुझे फरमाया, हजरत के साथ मुलाकात हुई, फरमाया हजरत आपके लिए गैबान दुआएं बहुत करता है। मैंने कहा बस यही हमारी सआदत है, यही हमारी सआदत। तो असल बात यही है कि पता नहीं कौन सा मौका किस तरह मिल जाता है जिससे सारे लाइन्स बाईपास हो जाते हैं और काम बन जाता है। हाँ जी, काम तो बनाना अल्लाह का काम है ना, वो तो इंसान नहीं बना सकता, काम अल्लाह ताला ही बनाता है, लेकिन रास्ता जो भी बन जाए उसके ज़रिए से अल्लाह ताला काम बना लेता है। तो अब तिल्क अशरतुन कामिला, ये 10 पॉइंट्स हो गए। हाँ जी, 10 पॉइंट्स हैं, इनको याद भी रखा जा सकता है। हाँ जी, गौर तलब, शेख की सोबत को हाजिर करने पर हरीस होना अच्छी बात है, जैसे कि ऊपर जिक्र हुआ, लेकिन उस सूरत में फायदा मंद होती है जब उससे शेख को तकलीफ ना हो और उसके मिजाज के मुताबिक इन उन मौाक़े में हासिल किए जो मौाक़े शेख ने मुरीदीन के लिए किसी जाबते के मुताबिक मुकर्रर किए हैं, वरना मुरीदीन के लिए शेख की सोबत को हासिल करने की वो कोशिश जिससे शेख को तकलीफ हो सख्त मुजर है। इसलिए शेख के मिजाज को अच्छी तरह तहकीक किया जाए कि मुरीदीन को अपनी सोबत किस तरह मैसर करना चाहते हैं, बस उसी तरह उसको हाजिर किया जाए। इनमें जो अवकात मैसर हो तो उस वक्त अपने तकाजों को अगर मुमकिन हो आगे पीछे करके शेख की सोबत से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की कोशिश कीजिए। मसलन शेख जो होता है नंबर एक वह इंसान होता है, और इंसान की अपनी ज़रूरतें भी होती हैं, होती है नहीं होती। हाँ जी, तो ज़ाहिर है मतलब वो जो अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा होगा तो उस वक्त अगर आप चले जाएँ तो क्या ख्याल है, उसको खुशी होगी? हाँ नहीं तो नुकसान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, शेख जो होता है वो माहौल में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं, उसका घर भी होता है, उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी बीवी भी होती है, उनके भी हुकूक होते हैं। और कहते हैं मैं मुरीद हूँ बस मुझे हर वक्त वो टाइम दे दे, तो उनका फिर वो क्या होगा, वो किधर जाएंगे? ज़ाहिर है उनका अपने निज़ाम है, अल्लाह ताला ने उनके हुकूक लाजिम किए हुए हैं, तो आप उनको छोड़ तो नहीं सकते, वो छोड़ेगा तो शेख कैसे रहेगा? ये ख्वातीन भी मुझसे बेहतर है ना, बहुत ज़्यादा तादाद में बेहतर है, तो ख्वातीन में ये एंगजाइटी पूछने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो पूछते रहते हैं। तो मेरी बेटी से पूछा कि हजरत घर में कैसे रहते हैं, घर में कैसे रहते हैं? तो उन्होंने कहा घर में तो हमारे साथ गप शप लगाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, कभी किसको छेड़ा कभी किसको छेड़ा, कहते अच्छा वो ऐसा भी करते हैं? तो कहते हैं जी हाँ, वो तो हमारे साथ तो ऐसे ही करता है। अब जाहिर है मतलब मैं घर में इस तरह तो नहीं बैठ सकता ना जिस तरह मैं किसी और जगह, वो मैं इस तरह बैठूंगा तो बेचारे क्या होंगे। उनके साथ तो बड़े लाइट मोड में, वैसे मजनून तरीका भी है ये ना। आयशा सिद्दीक तआला के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़ नहीं लगाए थे? हाँ जी, तो ये तो मतलब ज़ाहिर है, घर वालों के अपने हुकूक होते हैं, बाहर वालों के अपने हुकूक होते हैं, शागिर्दों के अपने हुकूक होते हैं, मुरीदीन के अपने हुकूक होते हैं, हर चीज़ का अपना अपना रंग होता है। तो इस वजह से जो तरीका उसने किसी चीज़ के लिए डिवाइस किया होता है, इस तरीके से वो करें, उसमें बड़ी हिकमत होती है और उस जरिए से फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ मसला नस्बतन कम है, लेकिन फिर भी मसला होता है। मसलन व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से भी काफ़ी सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। बस मैसेज और व्हाट्सएप में फ़ायदा ये होता है कि जिस वक्त भी आपने भेजा, अपने अपने हालात के मुताबिक भेजा, शेख उसको अपने हालात के मुताबिक पढ़ लेगा। जो आपकी जल्दी ज़रूरत होगी तो जल्दी दे देगा, देर की ज़रूरत हो तो देर से देगा, नहीं ज़रूरत होगी तो नहीं देगा, लेकिन आपका कम्युनिकेशन तो हो गया ना, आपने तो अपनी बात पहुंचा दी। तो एक वर्शन मौजूद है बाकायदा, जो दूसरी जगह बहुत कम है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें हमने दो नंबर रखे हैं, व्हाट्सएप के दो नंबर है। एक नंबर जनरल कॉन्टैक्ट का है जिसपे आम लोग राबिता करते हैं, जो हमारा 03005010542 नंबर है, वो आम लोग उस पर राबिता कर सकते हैं क्योंकि उनको मेरा दूसरा नंबर मालूम ही नहीं है। और एक नंबर खास हमने सवाल जवाब के लिए रखा हुआ है जिस पे लोग सवाल जवाब करते हैं, जैसे आज भी हमने है ना असर के बाद, तो इसमें सवाल जवाब हम तवक्कु करते हैं और बार बार ऐलानात भी किए हुए कि भाई सिर्फ इसी नंबर पर सवालात भेजो। उसकी वजह क्या है? मेरा जो दूसरा नंबर है वो बहुत बिजी रहता है, और बिजी रहने का मतलब क्या है कि आपने सवाल भेजा, उससे 20-25 और मैसेज आ गए, हो गया दरमियान में। हाँ जी, हाथी के मुंह में गन्ना तो किधर गया, वो मसले पता नहीं चलता, वही किधर सवाल किधर है, जवाब किधर है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब रह जाते हैं इस वजह से कि उनने गलत नंबर पे भेजा होता है, वो मेरे सामने उस वक्त आता ही नहीं है जिस वक्त जवाब देने का होता है। मसलन किसी ने 6 दिन पहले भेजा है, अब 6 दिन में मेरे पास उस नंबर पे कितने आ चुके होंगे, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। अब मैं जब इस तरह करूँगा, पीछे से देखूंगा, 6 दिन 7 दिन से पहले से देखूंगा ना, तो उसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो क्या मैं उस वक्त बैठ के हर एक को देखूंगा कि ये वो है या नहीं, वो है या नहीं, जनरल है जब सवाल है, तो कितना वक्त लगेगा, तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से हमने कहा कि एक नंबर स्पेसिफिक इस मकसद के लिए हो कि जिसमें लोग सवाल भेजते हों, ताकि मेरे पास जैसे ही आ जाए तो पता चल जाए कि ये सवाल है और इसके साथ वो जवाब मतलब आदमी दे दे। तो ये तरीका हमने हिकमत के बुनियाद पर किया है जिसमें फ़ायदा है। अब अगर कोई आदमी बार बार इस तरह करता हो, समझ भी रहा हो, लेकिन बार बार उसी नंबर पर भेज रहा हो, तो अगर उसको जवाब न मिले तो कसूर किसका है? जाहिर है उसका कसूर है, क्योंकि उसने उस नंबर को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जो उस मकसद के लिए जनरेट किया गया है। ठीक है ना। बेअते तरीकत, जब किसी शेख कामिल का पता चल जाए, उनके बारे में इत्मीनान हो जाए और शेख भी तरबियत करने पर आमादगी का इजहार फरमाए, तो इसके लिए एक मुआहदा बहुत मुफीद होता है जिसको बेअत होना कहते हैं। इसका तरीका ये कि इस बाशरा साहिब सिलसिला शेख के हाथ में हाथ देकर यहद किया जाए कि अपनी तरबियत के लिए सिर्फ उसी शेख के साथ राबता रहूँगा और शेख इसकी तरबियत का इरादा भी करे। ये सुन्नत मुस्तहबा है, इसके ज़रिए अक्सर वो नियामत अजीम नसीब होता है जिसको नस्बत कहते हैं। आप सल्लम ने सहाबा को मुहातिब फरमा कर अलावा बैत जहाद व बैत इस्लाम के इल्तिज़ाम अहकाम और इतमाम अमाल के लिए भी बैत फरमाया है। मुतअद्दिद अहादीस से साबित है, जैसे कि अब्दुर्रऊफ बिन मालिक रदियल्लाहु तआला की हदीस है, अन औफ बिन मालिक अश्शई रदियल्लाहु तआला قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال الا تبايعون رسول الله قال فبسطنا ايدينا। देखो ना, हाथ पहले पहला दिए, जो सवाल बाद में करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम रसूलुल्लाह से बैत नहीं करना चाहते हो? तो सवाल करना चाहते किस चीज़ पर, लेकिन हाथ पहले फैला दिए, हाथ पहले। फबसतना अदीना वकुलना कद बाय न क्या रसूलुल्लाह फ़ाला मन बाय قال على ان تعبد الله ولا تشرك بشيء والصلاه الخمس وتطيع الحدیث اخرجہ مسلم، ابو داؤد و نسائی. یعنی حضرت عوف بن مالک الشعری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، نو آدمی تھے یا آٹھ یا سات. ارشاد فرمائے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ہاتھ پہلا دیے اور عرض کیا کس امر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرے؟ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امور پر کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، اور پانچوں نمازیں پڑھو، حکام سنو اور مانو. روایت کیا اس کو مسلم، ابو داؤد اور نسائی نے. اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کیا کہ نہ بیعت اسلامی تھی نہ بیعت جہاد. لہٰذا اس حدیث میں مشائخ کیا مروج بیعت کا صحیح ثبوت موجود ہے. جس طرح فقہ میں بہت سارے مجتہدین تھے لیکن ان میں چار اپنے شاگردوں کے ذریعے زیادہ معروف ہوئے، ان کا فقہ محفوظ ہوا، ان پر چلنے والے حنفی، شافی، مالکی، حنبلی کہلائے. اس طرح فن تصوف میں بھی بہت سارے سلسلے رائج ہوئے. ان میں چار سلسلے چشتیہ، قادری، نقشبندی اور سروردیہ کو پاکستان میں زیادہ شہرت حاصل ہوئی. جس صاحب کو جس سلسلے کے ساتھ بھی مناسبت ہو اس کے ذریعے اس کو نسبت حاصل ہو سکتی ہے. کافی تو ایک ہی سلسلہ ہوتا ہے لیکن ہمارے قابل چاروں سلسلوں میں بیعت فرماتے ہیں تاکہ سب کا ادب ملحوظ رہے اور سلسلوں کے تقابل سے جیسے کہ بعض معلوم الحال لوگ کرتے ہیں محفوظ رہیں. تو یہ والی بات ہے کہ جو بیعت ہے مردوں کا یہ سنت سے ثابت ہے، اور عورتوں کا بیعت قرآن سے ثابت ہے. عورتوں کا بیعت قرآن سے ثابت ہے. ایک دفعہ مجھ پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، ایک عالم موجود تھے، کشمیری عالم تھے، وہ موجود تھے، کہتے یہ عورتوں کو بیعت کرتے ہیں. بڑے زور سے کہا. تو اس عالم نے کہا بھائی کوئی اور اعتراض کر لو، سن لیں گے، لیکن یہ تو قرآن سے ثابت ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے، یہ کیسے آپ اعتراض کرتے ہیں؟ تو اعتراض ہے ہی نہیں، کیونکہ عورتوں میں کوئی نبیہ نہیں گزری، نہ کوئی عورت شیخہ بن سکتی ہے. تو اب بتاؤ کہ عورتیں کہاں سے بیعت ہو پھر؟ بغیر بیعت کیوں؟ بغیر بیعت کے جو ہوتا ہے پھر وہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تو اس وجہ سے عورتوں کی جو بیعت وہ تو مردوں سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ عورت اگر رستے پہ نہیں ہے تو مرد چاہے کتنا ہی ولی اللہ بن جائے اس کا دین دروازے تک ہے، بس گھر میں نہیں ہے. ہاں جی، تو گھر میں دین لانے کے لیے تو عورت کی تربیت بہت ضروری ہے. اس کو بنیاد بنا کر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں اس کا نظام ہے. مجھ سے سب سے پہلے بیعت ہونے والا جو فرد ہے وہ عورت تھی، اور یہ بزرگوں سے سنا ہے کہ جس سے پہلے بیعت ہونے والا عورت اور ہونے والی عورت ہو اس کا سلسلہ زیادہ چلتا ہے. کیوں؟ کیوں؟ حدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آپ سے پر ایمان لائی تھی نا، تو اس کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ سے سب سے پہلے بیعت ہونے والی عورت تھی. ان کا سلسلہ بھی کافی ماشاءاللہ چلا تھا. مولا علیہ السلام سے ان کو زبردستی اپنے گھر لے گئے تھے، اپنے بیٹے کو بیعت کرایا تھا. ہاں جی، تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اس عورت نے مجھے 31 خطوط لکھے تھے، نہیں سوری، ہاں 31 خطوط کم از کم ریکارڈ اس کا ہے. اور باقاعدہ ٹیلی فون پر جو میری بات ان کے ساتھ ہوتی تھی وہ بھی اس نے نوٹ کی تھی، یعنی وہ ساری چیزیں نوٹ کرتی رہی، اور پھر اس نے اس کو کتاب کی شکل میں مطلب لکھ دیا سارا کچھ. مجھے اس نے دے دیا تو میں حیران ہو گیا. وہ اب بھی میرے پاس ہے. اس سے پہلے مجھ سے کوئی بیعت نہیں تھا، تو ایکسپیرئنس میرا صفر تھا. لیکن آپ اس کتاب کو اگر پڑھ لیں نا تو آپ حیران ہوگے کہ یہ کیسے، مطلب یہ تربیت تو بعد میں کسی کی نہیں ہوئی، جس میں باقاعدہ سٹیپس تھے. اب یہ فلاں سٹیپ شروع ہو گیا، اب یہ فلے ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا، ساری چیزیں باقاعدہ سٹیپ وائز بتائی جاتی تھی، اور ان وقت پر وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں. اب بھی میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں. میں کہا یا اللہ یہ کیا عجیب بات، تو نے کیسے اس نظام کو چلایا ہے. ہاں جی، پہلے ہمارے چھاپنے کا ارادہ تھا کہ ہم اس کتاب کو چھاپ لیں، پھر میں نے کہا کہ نہیں، عورتوں کا معاملہ ہے، بس ٹھیک ہے جی، چھاپتے نہیں ہیں. البتہ جن عورتوں میں ہم ذرا اہلیت دیکھ لیتے ہیں تو ان کو اس کا فوٹو کاپی دیتے ہیں کہ اس کو پڑھ کر واپس کر دو، تاکہ مطلب یہ کہ زیادہ پھرے نہیں لوگوں میں، اور بالخصوص مردوں تک پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بات ہے کہ عورتوں کی جو بیعت ہے وہ تو بہت ہی زیادہ عام ہے، اور عورتوں کی اصلاح کا کام یہ بہت ہی زیادہ عام ہے. عورتوں کے اندر دو تین چیزیں جو اللہ پاک نے مجھ پر ایسی کولی ہیں جس پر میں اللہ پاک کا بہت شکر کرتا ہوں، بہت بہت شکر کرتا ہوں. ایک یہ چیز جو اللہ نے مجھ پر کولی ہے کہ عورتوں میں صلاحیت زیادہ ہے مردوں سے اس راستے کی. ہاں جی، عورتوں میں صلاحیت زیادہ ہے. کیوں؟ اس کی وجہ تین ہے اور تینوں بڑے جینوئن ریزنز ہیں. نمبر ایک، عورتوں کو جو یکسوئی حاصل ہو سکتی ہے وہ مرد کو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یکسوئی ان کی فطرت میں ہے. دیکھو، میں جب بات کرتا ہوں ان سے تو وہ مجھے دیکھ تو نہیں ہے، وہ تو پردے میں ہوتی ہیں، لیکن وہ مسلسل سنتی ہیں. کیا مردوں سے ایسی توقع ہے کہ وہ جب نظر نہ آ رہا ہو تو اس کی بات سنے؟ ریونٹ میں ہم دیکھتے ہیں نا، وہ جو سامنے اسٹیج کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو سن رہے ہوتے ہیں، باقی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ باقی آپس میں گپ شپ لگا رہے ہوتے، وہ بس ہو رہی ہوتی نا، بس ہو رہی ہے. یہ ریونٹ میں ہے، بس یہ کافی ہے نا، اس سے زیادہ کیا ضرورت ہے سننے کی؟ ہاں جی، وہ چل رہا ہوتا ہے. تو یہ اس کی وجہ کی فطرت میں ان کی یکسوئی نہیں ہے، اور جبکہ عورتوں کی فطرت میں یکسوئی ہے. ایک بات جو بہت بڑی بات ہے، حضرت فرماتے یکسوئی ہو چاہے پاس یکسوئی بھی نہ ہو، اتنی اہمیت ہے اس کی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ شیخ نہیں بن سکتی نا، لہذا پہلا قدم ان کے اخلاص پر ہوتا ہے. اور مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ شیخ بن سکتے ہیں، لہذا ان کو خلافت کے وسوسے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کے لیے بہت بڑا روڑا ہوتا ہے. ہاں جی، تو یہ عورتوں میں کافی ماشاءاللہ یعنی خوبیاں ہیں کہ یہ جو ہے نا. یہ تیسری بات، اور وہ بھی پروون ہے، ان میں انفعالیت ہوتی ہے، تأثر لینا. یعنی میں اگر بات کروں گا تو جس بات پہ مرد سوچنے پہ مجبور ہے عورت اس پہ رو پڑتی ہے. مرد صرف سوچنے پہ مجبور ہے کہ بھئی یہ بات تو قابل غور ہے، تو عورت اس پہ رو پڑے گی. میں تأثر ہے. ہاں جی، ان کے سامنے آپ تھوڑا سا چندے کی اپیل کر لے تو اپنے زیوروں کو پھینک دیتی ہیں، ان میں تأثر ہے. تو یہ تین چیزیں جو ہے نا، ایسی چیز جو ان کو اس لائن میں بہت ممتاز کر دیتی ہے. نتیجتاً جب ہم ذکر دیتے ہیں عورتوں کو، تو 40 دن کے بعد ہم اس کو لطائف کا ذکر دیتے ہیں، اور ان کا چل بھی پڑتا ہے. جبکہ مردوں کو 3-4 سال کے بعد بھی دیتے ہیں تو ان کا نہیں چلتا. ہاں، ان کا چل پڑتا ہے، وہ کام شروع ہو جاتا ہے ان کا. ہاں جی، تو یہ بات، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر عورتوں کا جو نظام کھولا ہوا ہے بہت بڑی بات ہے. اور دوسرا، اللہ پاک نے مجاہدے کا جو نظام کھولا ہوا ہے اس دور کے لحاظ سے، مجاہدے کا نظام، یہ اس کے بارے میں یہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اب مجاہدے کے لوگ قابل نہیں ہیں، قوا کمزور ہیں، لہذا مجاہدہ نہیں کر سکتے. یہ باتیں ہم سنتے تھے، کتابوں میں بھی لکھی تھی، لیکن پتہ چل گیا کہ نہیں، مجاہدہ کر سکتے ہیں. صرف یہ والی بات ہے کہ رخ اس طرف نہیں ہے. اور جب رخ اس طرف ہو گیا تو ماشاءاللہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، بلکہ خود مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کر سکتے ہیں. پہلے لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ کانا کم کہیں گے تو کمزور ہو جائیں گے. ہمارے ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، کیا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، کمزور ہو جاتے ہیں؟ کمزور نہیں ہوتے. تو اب اگر وہ میڈیکلی اگر وہ کم نہیں کم کہتے اور کمزور نہیں ہوتے، ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے کیوں نہیں؟ ہاں جی، یہ بات بالکل ثابت ہو گئی. لہٰذا اب ہم ڈٹ کے مجاہدہ کر دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا کام ہو جاتا ہے. اس طرح اور بہت ساری چیزیں اللہ پاک نے کھول دی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اپنے وقت کے حالات کے لحاظ سے اللہ پاک نے کھولی ہوئی ہیں. ہاں ہاں، میں کہتا ہوں کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ ایک دن کی چیز ہو نا، زیادہ باقی نہ رہے، کیونکہ ہمارے پاس صرف اب ایک ہی دن ہے نا. ہاں بس ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، یہاں تک یہ باقی ہے. چلو، جتنا ہم اسے ہو سکے ہم کر لیتے ہیں، تاکہ 10 منٹ اور ہیں نا، تو اس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. تمام سلسلوں کا ادب، سلسلوں کی مثال طب کی مختلف قسموں کی ہے. یہ بھی اللہ پاک کا خاص فضل ہے ہمارے سلسلے پہ کہ ایک جامع سلسلہ بنایا ہمارا, جامع سلسلہ الحمدللہ, صحیح معنوں میں جامع سلسلہ. صحیح معنوں میں کیوں کہتا ہوں, میں نہیں کہتا ہوں کہ دوسرے صحیح معنوں میں نہیں ہے, لیکن یہاں کچھ تکوینی اسباب اللہ پاک نے جمع فرما دیے ہیں جس سے واقعی جامع سلسلہ بن گیا. مثلا نقشبندی سلسلے کے بارے میں ہمارے حضرت کا شرف صدر تھا کہ میں نقشبندی ہوں, اس میں تو میری بات کی ضرورت ہی نہیں ہے, حضرت نے خود فرمایا ہے بس کافی ہے. چشتی کے ساتھ مجھے اتنی زیادہ محبت اس لیے کہ میرے شیخ چشتی تھے, تو اپنے شیخ کے ساتھ تو محبت ہوتی ہے نا, تو ظاہر ان کے سلسلے سے بھی محبت ہوگی, تو لہٰذا چشتی میں اس لیے ہوں. سروردی ہمارے نسل بھی سلسلہ ہے, کاکا سے رحمۃ اللہ علیہ سروردی تھے, ہاں جی, لہٰذا نسبی سلسلے کے ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ خود بخود ہے. اور قادری سلسلے کے بارے میں میرا یہ گمان ہے, واللہ عالم بالصواب, کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کاکا خیلو کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے, کاکا خیلو کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتا ہے. یہ کوئی بات ہے درمیان میں واللہ عالم, جس کا مجھے ابھی تک ریزن معلوم نہیں ہے کہ ریزن کیا ہے, لیکن ہے یہ بات, بار بار یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کاکا خیلو کے ساتھ ان کا معاملہ بہت عجیب ہے. سید تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ بھی ایسے ہوا, حلیمی صاحب کے ساتھ بھی ایسے ہوا, میرے ساتھ بھی ایسے ہوا, اور جب بھی کسی قادری بزرگ کے ہم جاتے ہیں, مطلب جو فوت شدہ بزرگ ہوتے ہیں بازار پہ جاتے ہیں, فوراً پتہ چلتا ہے. ہاں جی, تو یہ کوئی بات ہے درمیان میں, کوئی انٹرنل کوئی لنک ہے. تو چاروں سلسلے ہو گئے نا, چاروں سلسلوں کے ساتھ براہ راست گوئے کی اٹیچمنٹ اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی. اور کبریوی سلسلے کے ساتھ مولانا رحمۃ اللہ کے مثنوی شریف کے ساتھ, وہ کبریوی سلسلہ ہے, شاذلیہ سلسلے کے ساتھ, رفاعی سلسلے کے ساتھ, عبودی سلسلے, اس کے ساتھ اپنے اپنے ریزنز ہیں, وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے سلسلے ہیں اس وقت اس دور کے جو ہیں, وہ اس ایک سلسلے میں اللہ نے جمع کر دیے. اب جب ایسی بات ہے تو پھر سب کے ساتھ محبت لازمی ہے نا, جو سب کے ساتھ محبت لازمی ہے تو تمام سلسلوں کا ادب خود بخود آ گیا. اس وجہ سے جب بھی کسی سلسلے کو بھی کوئی تنخیص کرتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ کہ آدمی کیا کر رہا ہے, یہ کسی سلسلے کے بارے میں کیوں اس طرف بات کر رہا ہے, کمزور بات کر رہا ہے کہ یہ ایسا اور یہ ایسا ہے, یا اپنے آپ کو باقیوں پر فوق دکھاتا ہے کہ بس ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, ہم ایسے. یہ بات ہی تصوف کے خلاف ہے. کیا خیال ہے مولانا, کوئی صوفی اس طرح بات کر سکتا ہے کہ ہم اچھے ہیں؟ بھائی تو تصوف کی بنیادی تیم کے خلاف ہے. جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ تصوف کے پاس, وہ تو قریب گزرا بھی نہیں, اس کو تو ابھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے. سب سے پہلے یہ والی بات اس کو حاصل کرنی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں, یہ والی بات ہے. تو یہ والی بات آج کل بہت ہی زیادہ کم پائی جاتی تھی کہ تمام سلسلوں کو سمجھا جائے یہ علاج کے رستے ہیں, اور ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے, ہر ایک کے اپنے اپنے فوائد ہیں, لہٰذا جو جس سلسلے میں بھی جائے گا اس کے لیے وہ کافی ہے انشاءاللہ. سلسلوں کی مثال طب کی مختلف قسموں کی, جیسے ایلوپیتھی, ہومیوپیتھی, طب یونانی, اکوپنکچر وغیرہ, مطلب صحت ہوتی ہے نا کہ صحت حاصل کرنے کا طریقہ, اس لیے جس کو جس طریقے سے شفا حاصل ہو جائے وہ اس کے لیے, اس کا اگر ممنون ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کو دوسری قسموں کو ناقص کہنے کا حق تو نہیں ہوگا, کیونکہ جس طرح مختلف لوگ کے مزاج مختلف ہیں اس طرح کی شفا کے طریقے بھی مختلف ہیں. جس کو جس قسم سے زیادہ مناسبت ہے اس سے علاج کرے گا تو جلدی صحت یاب ہوگا. اسی طرح روحانی صحت بھی مطلوب ہے, لیکن اس کو حاصل کرنے کے طریقوں میں آزادی ہے, جس سے جس کو مناسبت ہو اس سے استفادہ کرے, لیکن باقی لوگوں کو جن کو دوسرے سلسلوں کے ساتھ مناسبت ہو ان کو اپنے طریقے پر مجبور نہ کرے. ایک بات یاد رکھنا چاہیے, نقشبندی سلسلہ جو ہے یہ منفرد ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن افضل ہے اس باقیوں سے, یہ بات ٹھیک نہیں, بات سمجھ آ رہی ہے. منفرد ہے, منفرد اتنا ہے کہ حضرت مجید صاحب نے خود فرماتے ہیں طریق نا مسلوک اس کو کہتے ہیں. مجید صاحب اس کو کیا کہتے ہیں؟ طریق نا مسلوک, یعنی عام راستہ نہیں, عام گزر نہیں ہے, بلکہ شارٹ کٹ ہے. حضرت بھی فرماتے ہیں कि जैसे मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं, एक मतलब वो है मेन रोड है या मोटरवे है जो भी है, नॉर्मल शाहरा जिसको हम कहते हैं, शाहरा है, तो शाहरा पे जाना, शाहरा पे सारे लोग जाते हैं। लेकिन किसी को कोई शॉर्ट रूट मालूम हो और वो शाहरा को बाईपास करके पहुंच जाए, और जो है ना मतलब ये कि वो, अब बताता हूँ असल बात, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की तरफ से अता हुआ है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। हजरत के एक मकतूब शरीफ में एक ख्वाब का जिक्र है, उसमें कसाब का लफ्ज आता है, आपको याद हो गया? नहीं, कसाब जो है ना, वो उसमें वो खत जो भेजा है हजरत ने, तो उसमें उस ख्वाब की ताबीर बताई है। तो उसमें उनने कहा कि दो तुर्क हैं, उसके पीछे वो कसाब जा रहा है, तो वो तुर्कों ने मेन रोड को छोड़ दिया, मेन रोड को छोड़ दिया, और वो एक एक जो है ना मतलब एक गैर मानूस रास्ते के अंदर घुस गए, तो ये भी उनके पीछे घुस गए। तो देखा कि वो बड़े खुश थे कि भैया तो हम जल्दी पहुंचे, थोड़ी देर आगे जाके देखे तो एक बहुत बड़ा पहाड़ पहाड़ आ गया। अब ये बात है कि वो तुर्क जो है ना उसी जोश में, क्योंकि उनको रास्ता मुख्तसर मिला था, उस जोश में पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहे और ये देखते रह गए, ये भी घिसटते पिसटते उनके पीछे पहुंच गए। आज जब पहुंच गए तो वहां जाकर वो कहते हैं बादशाह के साथ मिलना चाहते, तो देखा कि बादशाह तो अपने खेमे में नहीं है, बादशाह अपने खेमे में नहीं है, और वो शिकार करने गए हुए हैं। ये ख्वाब था। इस पर जो है ना हजरत ने जवाबी दी कि हमारा तरीक तरीके ना मसलूक है, हमारे तरीक तरीके ना मसलूक है। वो तुर्क जो मेन रोड को छोड़ के एक गैर मानूस रोड की तरफ चले गए, ये हमारा जज्ब कसबी है, ये हमारा जज्ब कसबी है। यानी मेन रोड पे आप आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई होती है ना, तो पहुंचना तो आपने उधर ही है ना, जहां तक पहाड़ के पीछे जाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता, जबकि जो नामसलूक तरीके से आ गया तो सब एकदम चढ़ाई आ गई, तो उस चढ़ाई पे उबूर तो करना था, वरना तो आपके मुख्तसर रास्ता रह ही जाएगा, फिर क्या फायदा अगर आप पहुंचे नहीं। तो फरमाया कि ये जो पहाड़ है ये नफ्स को सर करने का पहाड़ है, तो जैसे जज्बे कसबी हासिल हो जाए तो अब इस नफ्स के पहाड़ को सर करने के लिए मुजाहिदा करना होगा, ये मुजाहिदा की तरफ इशारा है ये जो पहाड़ है। वो जिस वक्त ये वहां पर पहुंच गया तो पता चले कि बादशाह अपने खेमे में नहीं, तो बादशाह तो वरा वरा है ना, वो तो उसको कौन मिल सकता है। वो शिकार करने गए हुए, वो लोगों को अपनी तरफ ला रहे। हाँ जी, तो उसका मतलब ये देखो ना कितनी खूबसूरती के साथ हजरत ने माशाल्लाह वो सारी बात बता दी। ये नक्शबंदी सिलसिले का थीम है, तो इसको हम तरीके ना मसलूक कहें बिल्कुल सही, मुख्तसर रास्ता कहें बिल्कुल सही, इसमें कोई इश्काल नहीं, क्योंकि इसमें शॉर्टकट है और शॉर्टकट में धोखा भी लग सकता है, इसलिए इसमें शेख कामिल की अहमियत और बढ़ जाती है। क्योंकि अगर शॉर्टकट में आपको गलत गलती हो गई ना तो बस फिर गए, फिर रास्ता नहीं मिलेगा। तो ये बात मतलब जो है कि नक्शबंदी सिलसिला मुनफरिद तरीका है, नंबर एक। इसकी जो बताते कि हम इसकी जो इब्तिदा है दूसरों की इंतहा, वो इससे मुराद ये है कि दूसरों के यहाँ इंतहा जज्बे वह भी है, और उसको हमने पहले कर दिया और वो जज्बे कस्बी की सूरत में लाया, लेकिन वो जज्बे कस्बी जज्बे वह भी जो फर्ज फरमाते हैं इसमें जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एक मुंतही का है दूसरा मुब्तदी का है, हजरत ने इफ़ाद फरमाई है। तो अब ये जो है ना मतलब है कि जज्ब के लिहाज से तो वाकई दूसरों का बाद में आता है, इनका पहले में आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो मुकाम उनका है वो आपको पहले हासिल हो जाए। नहीं भाई, पहले आपको हासिल नहीं हुआ, आपको जज्ब कस्बी पहले हासिल हुआ। अब देखो वो मेन रोड पे जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहे हैं, चढ़ रहे चढ़ रहे, उधर ही पहुंच गए जहां तक आप पहाड़ को क्रॉस करके पहुंच जाते हैं, पहुंचना तो उधर ही है, पहुंचने में तो मसला नहीं है। तो आप बेशक मेन रोड पे जाएं, चाहे वो दूसरे पगडंडी से जाएं और पहाड़ के ऊपर चढ़ के गुजर जाएं, बात तो वही है। तो अब इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि उन चूंकि निया तरीका था, इसलिए शौक दिलाने के लिए ऐसे अल्फाज लाए गए जिससे लोगों का शौक बढ़ जाए और वो जो है ना मतलब ये कि इस रास्ते पे इस्तेकामत के साथ चल जाए। तो यार लोगों ने उसको वाकई समझ लिया और फिर दूसरे सिलसिलों की तनकीज करने लगे कि हम तो बड़े तीर तीर मार खान तीस मार खान हैं, हमें तो बस एकदम जहाँ जहाँ ख्वाजा मुइद्दीन चिश्ती अजमेर हम ने पहुँच रहे थे इतने लंबे तरीके से, हम यकदम वहाँ पर पहुँच गए जिंदाबाद। आज ये तरीका ठीक नहीं है, इसकी इस्लाह ज़रूरी थी। तो अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने हमारे सिलसिले को इसके लिए चुन लिया और इसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह हो गई। इस निज़ाम के बहुत सारे हज़रात माशाल्लाह आ गए इस तरफ, बहुत सारे आए, अल्लाह का शुक्र है। वो यानी कुछ लोग तो रोते रहे कि हमने पूरी ज़िंदगी ज़ाय की गलत सोच में, कुछ लोग तो इस तरह रोते रहे, कुछ लोगों ने अपना रूट चेंज कर लिया और कुछ लोगों ने माशाल्लाह यानी बाकायदा बेत का से निज़ाम बना दिया। अलगरज ये है कि दूर दूर तक दुनिया के मतलब इलाकों में दूर दूर तक लोग जो है ना माशाल्लाह इस निज़ाम को अब ले रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमा दे और इन तमाम सिलसिलों के बरकात से हमें नवाजे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
हज़रत, जैसे आपने फरमाया कि नक्शबंदी सिलसिला मुनफरिद है, इसमें पहले जज्बे कस्बी हासिल किया जाता है और फिर बाद में जो है सलूक, तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है तो इसमें मतलब तो बाकी सलासिल भी इसी तरह ये पहले जिक्र देते हैं तो फिर ये मुनफरद तो नहीं रहेगा?
तीन दौर वगैरह जो कराते हैं बाकी हज़रात तो नहीं कराते, तो इस लिहाज से मुनफरिद ज़रूर है। लेकिन मुनफरिद होने से मुराद ये नहीं लिया जाना चाहिए कि वो सब सिलसिलों से बेहतर सिलसिला है, बस ये है कि उनका ये तरीक़ाकार है जो मुनफरिद है। जिनको जिनको फिक्र असरार की जरूरत न हो बर रास्त हो जाएगा के जरिए से अपने साथ मतलब उनको सलूक देकर नहीं का जज्बा आ गया रहता है।
तो जज्बा पैदा किया जा सकता है या कसब या खुद ब खुद होता है?
सवाल था कि आपने कहा था कि जिसको हिरस होती है उसको सच्ची मोहब्बत नहीं होती, उसमें सच्ची मोहब्बत नहीं होती जिसको हिरस होती है, तो यानी कि जिसको सच्ची मोहब्बत हो कि उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती किसी किस्म की भी।
अच्छा अजीज, पूछना था कि शजरे के अंदर बुजुर्गों के नाम के साथ एक हिंसा लिखा होता है अक्सर देखा है, और बीच में कुछ हरूफ लिखे होते हैं, किसी के साथ हा लिखा है, किसी के साथ चे लिखा होता है, जैसे जी जी आपके साथ काफ के साथ 1:40 आ रहा है और 43 भी आ रहा है, तो इसे
हज़रत ये सिलसिले की जो तरतीब है जो बंदे को हासिल होती है, आया कि उसका ये फितरी और जबिलती तरीक़ाकार है जब वो किस तरह इख्तियार करेगा, ख़ुद इख्तियारी फेल है या ये शेख के ऊपर होता है या किस तरह इसको आप कादरी और लक्ष्यबंदी और सिलसिले कर 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 रहे हैं?
हज़रत ये तनज़ुल में तशबीह से तनज़ीह की तरफ का सफ़र होता है, मतलब जो है वो हकीकत की तरफ बंदा जाता है, हाँ तनज़ीह की तरफ, तशबीह से जब हम जो है वो तनज़ीह की तरफ जाते हैं तो वो तो समझ में आता है, लेकिन तनज़ीह से तशबीह की तरफ नीचे आना वो ज़रा समझ में नहीं आ रहा। یہ تنزیہ سے